आगे सबक देखिए भाई, वईदा अतअम अन ज़िहारैन सित्तीन मिस्कीनन लिकुल्लि मिस्कीनिन सा'अन मिन बुर्रिन लम युज़िहु इल्ला अन वाहिदिन मिन्हुमा इंदा अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह। وقال محمد رحمه الله تعالى يجزئه عنهما وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنهما। भाई जिहार के मसाइल चल रहे हैं भाई, और जिहार आपने पढ़ा, इसे कहते हैं कि कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी मां के साथ तशबीह दे या अपनी बीवी को उन औरतों के साथ तशबीह दे जो इंसान पर हराम हैं ताबीद के तरीके पर। मसलन बीवी से कहता है अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, तो ये इस शख्स ने नहायत नापसंदीदा बात कही और झूठ कहा है, तो लिहाजा इसकी वजह से शरीयत ने इस पर बीवी को हराम कर दिया जब तक वो कफारा न अदा कर दे। और जिहार का कफारा जो है वो एक गुलाम या बांदी को आजाद करना है बाहम सोहबत करने से पहले, और अगर गुलाम या बांदी मुयस्सर ना हो तो फिर मुसलसल 2 माह के रोजे रखने पड़ेंगे, और ये भी मिनकबल अयतमासा की कैद के साथ हैं कि बाहम सोहबत करने से पहले। और अगर किसी में रोजे रखने की भी इस्तेताअत ना हो, मसलन वो बहुत बीमार है या बहुत बूढ़ा है, तो फिर इस सूरत के अंदर उसको 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, और ये खाना भी 2 वक्त का होगा ताकि उनकी 1 दिन की जरूरत पूरी हो जाए, क्योंकि एक इंसान दिन में 2 मर्तबा खाना खाने का मोहताज है भाई। और फिर गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि जब गुलाम आजाद करना चाहे तो ऐसा गुलाम होना चाहिए कि जिसका कोई जिनसे नफा फौत न हुआ हो, और अगर मजनून गुलाम कफारे में आजाद करना चाहता है तो यह काफी नहीं भाई, इसलिए क्योंकि इंसान अपने आजाद से जो नफा उठाता है वो अकल के जरिए उठाता है, तो जब एक गुलाम मजनून है उसकी अकल ही नहीं है तो गोया उसके तमाम मुनाफे ही हलाक हो चुके हैं भाई, तो लिहाजा इसको आजाद करना काफी नहीं, इससे कफारा अदा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा गुलाम है कि जिसको जुनून के दौरे पड़ते हैं, कभी ठीक होता है और कभी जुनून के दौरे पड़ते हैं, तो फिर इस सूरत में इस गुलाम को आजाद किया जा सकता है। और फिर यह भी बताया साहिब हिदाया ने कि कामिल गुलाम होना चाहिए जिसको वो कफारे के अंदर आजाद करे, लिहाजा मुदब्बर और उम्मे वलद को आजाद करना काफी नहीं, इसलिए क्योंकि वो आजादी के मुस्तहिक हो चुके हैं भाई। इसी तरह अगर मुकातब ने कुछ बदले किताबत अदा कर दिया है तो उसको भी आजाद नहीं कर सकते, क्योंकि गुलाम जिसको आजाद किया जाए वो बदल के साथ नहीं होना चाहिए, बगैर बदल के खालिस अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। और अगर ऐसा मुकातब है जिसने कोई माल अदा नहीं किया तो फिर इस सूरत के अंदर इस मुकातब को आजाद किया जा सकता है भाई। और अगर ये जिहार करने वाला है, ये अपने किसी करीबी महरम रिश्तेदार को खरीदता है, तो वो खरीदते ही आजाद हो जाएगा फौरन। तो अगर इसके अंदर वो जिहार की नीयत करता है उसको खरीदते वक्त, तो इससे भी जिहार का कफारा अदा हो जाएगा। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इमाम साहब के नजदीक एताक तजज्जी को कबूल कर लेता है, जबकि साहिबैन के नजदीक एताक तजज्जी को कबूल नहीं करता। आप आधे गुलाम को आजाद करेंगे तो सारा ही आजाद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता आधा गुलाम आजाद हो और आधा ना हो, लेकिन इमाम साहब के नजदीक एताक तजज्जी को कबूल कर लेता है। तो लिहाजा अब सूरत मसला यह कि 2 आदमियों के दरमियान एक गुलाम मुश्तरक है, उनमें से एक ने जिहार कर लिया तो उसने अपने हिस्से के निसफ गुलाम को आजाद कर लिया, और फिर ये दूसरे निसफ का भी जामिन बन गया और दूसरे निसफ को भी फिर इसने बाद में आजाद कर दिया। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस गुलाम की वजह से कफारा अदा नहीं होगा। वजह यह कि जब इसने निसफ गुलाम को आजाद कर दिया तो यह एताक जो है तजज्जी को कबूल कर लेता है। निसफ गुलाम तो आजाद हो गया लेकिन निसफ अभी भी दूसरे शख्स का ममलूक है, लेकिन उसके अंदर नुकसान आ गया। वजह यह कि अब इस गुलाम ने हर हाल में आजाद होना है क्योंकि इसका निसफ आजाद हो चुका है। अब वो जो मालिक है इसको मुस्तकिल गुलाम बनाकर नहीं रख सकता और नीज वो इसको बेच भी नहीं सकता क्योंकि निसफ तो ये आजाद हो चुका है। तो ये दूसरा मालिक जो है अब इस गुलाम को मुस्तकिल गुलाम बनाकर नहीं रख सकता, इस पर अपनी मिल्कियत को बरकरार नहीं रख सकता, बल्कि अब इस गुलाम ने आजाद होना है हर हाल में। तो लिहाजा मालूम हुआ इस गुलाम के अंदर नुकसान आ गया, हत्ता कि इसके लिए अब इसको बेचना भी जायज नहीं है। तो इस आधे नाकिस गुलाम का भी जामिन बन गया और फिर उसने इसको आजाद कर दिया। तो ये नाकिस गुलाम आजाद हुआ, कामिल गुलाम आजाद नहीं हुआ, और नाकिस गुलाम की आजादी से तो कफारा अदा नहीं होता। जैसे मुदब्बर और उम्मे वलद आजादी उनका हक बन जाती है, तो जैसे उनको कफारे में आजाद करना जायज नहीं, इसी तरह इस गुलाम को भी कफारे में आजाद करना जायज नहीं, बल्कि जो मुदब्बर और उम्मे वलद की गुलामी में नुकसान आया था उनके अंदर रिकियत नाकिस हो गई थी क्योंकि उन्होंने हर हाल में आजाद होना है। इस गुलाम के अंदर जो नुकसान आया है वो उनसे भी बढ़कर है क्योंकि वो तो मालिक के मरने के बाद आजाद होंगे जबकि इसने फिलहाल ही बदल देगा और आजाद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा इसके अंदर उससे भी बढ़कर नुकसान आ गया तो इससे जमान अदा नहीं होगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, जब इस शख्स ने निसफ गुलाम को आजाद किया तो बाकी निसफ भी खुद ब खुद आजाद हो गया, तो गोया पूरा गुलाम ही आजाद हुआ कफारे के अंदर और इस शख्स को अब जमान देना पड़ेगा तो इसका कफारा अदा हो गया। जबकि इसके मुकाबले में अगर एक शख्स पूरे गुलाम का मालिक है और वो कफारा जिहार के अंदर इस गुलाम को पहले निसफ आजाद करता है और फिर बाद में निसफ आजाद करता है तो इस सूरत में ये कफारे से अदा हो जाएगा, इसके जरिए कफारा अदा हो जाएगा। भाई वजह यह कि इमाम साहब फरमाते हैं कि यहां पर जब निसफ गुलाम को आजाद किया तो बाकी निसफ में नुकसान आया लेकिन बाकी निसफ का भी यही शख्स मालिक है, बाकी निसफ का भी यही शख्स मालिक है और इसके अंदर जो नुकसान आया है वो कफारे में आजाद करने की वजह से आया है, लिहाजा इस नुकसान को बर्दाश्त किया जाएगा और ये कफारे की अदायगी से मानिया नहीं होगा। भाई कहते हैं ये इसी तरह है जैसे कुर्बानी के जानवर को ऐब से पाक होना चाहिए लेकिन अगर ऐन कुर्बानी करते वक्त उस जानवर में कोई ऐब आ जाए तो वही जानवर काफी है क्योंकि कुर्बानी के फेल की वजह से उसमें नुकसान आया है। तो यहां पर भी इस गुलाम के अंदर जो नुकसान आया है वो कफारे के फेल की वजह से आया है, लिहाजा ये कफारे के अंदर आजाद किया जाए तो काफी हो जाएगा। तो गोया इस शख्स ने अपने गुलाम को दो कलामों के साथ आजाद किया, पहले आधा आजाद किया और फिर दूसरा आधा आजाद किया। जबकि साहिबान फरमाते नहीं, एताक में तजज्जी नहीं हो सकती, जब इसने निसफ आजाद किया तो पूरा ही गुलाम आजाद हो गया, तो ये गुलाम एक ही कलाम से आजाद हुआ है, दो कलामों से आजाद नहीं हुआ, लिहाजा इसे कफारा अदा हो गया। और उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर एक शख्स जो है उसने आधा गुलाम आजाद किया कफारे से, फिर बीवी से सोहबत कर ली और सोहबत के बाद बाकी आधा गुलाम आजाद किया तो इमाम साहब के नजदीक यह कफारा अदा नहीं हुआ। वजह यह कि नस के अंदर कैद है कि गुलाम का आजाद करना सोहबत से पहले होना चाहिए और इसने तो पूरे गुलाम को सोहबत से पहले आजाद नहीं किया बल्कि निसफ को आजाद किया है और निसफ तो सोहबत के बाद है, लिहाजा इससे कफारा अदा नहीं होगा। जबकि साहिबैन के नजदीक जब इसने पहला निसफ आजाद किया तो एताक में तजज्जी नहीं होती, लिहाजा पूरा गुलाम ही आजाद हो गया, लिहाजा इसे कफारा अदा हो गया। और फिर अगर गुलाम या बांदी मुयस्सर ना हो तो फिर दो माह के मुसलसल रोजे रखना पड़ेंगे। और उसमें साहिब हिदायत ने बतलाया कि इन दो माह के दौरान रमजान का महीना भी नहीं आना चाहिए, ईदुल फितर का दिन भी नहीं आना चाहिए और ईदुल अजहा और उससे अगले तीन दिन यानी अय्याम तशरीक भी नहीं आने चाहिए। वजह यह कि ये जो पांच दिन है यानी ईदुल फितर का दिन है, ईदुल अजहा का दिन है और उससे अगले तीन दिन जो अय्याम तशरीक है, इन पांच दिनों के अंदर शरीयत ने रोजा रखने से मना फरमाया है। लिहाजा इनके अंदर अगर रोजा रखेगा तो वो कामिल नहीं होगा बल्कि नाकिस होगा। क्या होगा? नाकिस होगा। वजह यह कि रोजे की अपनी जात में कोई खराबी नहीं है लेकिन यहां इन अय्याम की वजह से रोजे में क्या रही है, खराबी आ रही है। तो रोजा अपनी जात के एतबार से तो जायज लेकिन गैर की वजह से जायज नहीं है, तो इसमें नुकसान आ गया तो यह नाकिस हुआ। और वो जो वाजिब हुआ था कफारा वो तो कामिल वाजिब हुआ है तो नाकिस रोजे के जरिए कामिल कफारे की अदायगी नहीं हो सकती भाई। और उसके बाद साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया, अगर इन रोजों के दौरान दरमियान में कोई शख्स बीवी से सोहबत कर लेता है लेकिन ऐसी सोहबत है कि जिसकी वजह से रोजों के मुसलसल होने में कोई खलल न आए, यानी रात को सोहबत कर ली या दिन में सोहबत की लेकिन यह भूल गया था कि मेरा रोजा है, तो इन मुसलसल रोजों के दरमियान अगर वती पाई गई तो क्या फिर यही मुसलसल रोजे काफी हैं या नए सिरे से रखना पड़ेंगे? तो तरफैन फरमाते नए सिरे से दो माह के रोजे रखना पड़ेंगे, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन्हीं रोजों को मुकम्मल कर ले। वजह यह कि सोहबत की वजह से ततावुअ में कोई असर नहीं पड़ा तो ततावुअ उसी तरह बरकरार है। हां एक कैद थी नस के अंदर के सोहबत से यह पहले होने चाहिए लेकिन अगर इसी इन्हीं रोजों को जारी रखेगा तो कुछ रोजे तो सोहबत से पहले गुजर गए थे और कुछ सोहबत के बाद आ जाएंगे, तो जबकि अगर तरफैन के कौल को लिया जाए तो फिर सारे रोजे ही सोहबत के बाद हो जाएंगे। अगर नए सिरे से रखेगा तो सारे ही रोजे सोहबत के बाद हो जाएंगे, लिहाजा बेहतर यह है कि कुछ रोजे तो सोहबत पर मुकदम हो भाई, लिहाजा इन्हीं रोजों को मुकम्मल कर ले भाई। जबकि तरफैन फरमाते हैं कि रोजों के अंदर जो शरीयत ने शर्त लगाई है कि ये सोहबत पर मुकद्दम होने चाहिए, ये देखने में एक शर्त है लेकिन हकीकत में यहां दो शर्तें हैं, क्योंकि जब रोजे सोहबत पर मुकद्दम होंगे तो मालूम हुआ रोजे सोहबत से भी खाली होंगे। जब रोजे सोहबत पर मुकद्दम हो तो इसके साथ लाजिम है कि रोजे सोहबत से खाली भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि रोजों के बीच में सोहबत हो, क्योंकि अगर रोजों के बीच में सोहबत है फिर तो रोजे सोहबत पर मुकदम ना हुए। तो जब भी रोजे सोहबत पर मुकदम होंगे उसके साथ लाजिम है कि रोजे सोहबत से खाली होंगे। तो यहां पर इस शख्स ने जब बीच में सोहबत कर ली तो रोजों का मुकदम होना तो मुमकिन ना रहा लेकिन रोजों का सोहबत से खाली होना तो मुमकिन है, अभी भी ये उस पर अमल कर सकता है कि नए सिरे से रोजे रखे तो अब रोजे सोहबत से खाली हो जाएंगे। सोहबत पर मुकदम तो ना हो सके लेकिन सोहबत से खाली हो जाएंगे, लिहाजा इसको बाद में नए सिरे से रोजे रखना पड़ेंगे भाई। और नीज इन 60 रोजों के अंदर अगर कोई एक रोजा भी छूट गया, चाहे किसी उजर की वजह से हो चाहे बगैर उजर के हो, तो रोजे दोबारा नए सिरे से रखना पड़ेंगे भाई। और अगर गुलाम ने जिहार किया तो फिर उसको 60 रोजे ही रखना पड़ेंगे। आका उसकी तरफ से कोई गुलाम आजाद करता है या उसकी तरफ से 60 लोगों को खाना खिलाता है तो ये जो आका का फेल है वो गुलाम का फेल नहीं बन सकता भाई। कफारा तो गुलाम पर आया है, आका पर नहीं आया। और आका इसको मालिक बनाए भी तो भी ये मालिक नहीं बनता क्योंकि इसमें मालिक बनने की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा इसको रोजों से ही कफारा अदा करना पड़ेगा। और अगर रोजों की इस्तेताअत भी ना हुई किसी शख्स में, वो बहुत बूढ़ा है या बहुत बीमार है, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा और उसके अंदर फिर हर मिस्कीन को निस्फ सा गंदुम दे दे, या अगर खजूर या जौ देना चाहता है तो एक सा खजूर या एक सा जौ देना पड़ेगी। और मैंने आपको बतलाया था कि यह सा से मुराद साए इराकी है भाई, इंदल अखनाफ, क्योंकि सा तीन किस्म के हैं, एक साए हाशमी है और वो 32 रितल का होता है, एक साए हिजाजी है ये सबसे छोटा है, ये 5 रितल और सुलू से रितल यानी 5 रितल पूरे और एक रितल का तीसरा हिस्सा, ये है साए हिजाजी। और जबकि साए इराकी 8 रितल का होता है। और इंदल अखनाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना में साए इराकी राइज था भाई। और मैंने बताया था कि ये सा जो है 4 मुद बनता है, 4 मुद इसकी मकदार है और हर मुद में 2 रितल होते हैं, ये 8 रितल का है ना, तो हर मुद में 2 रितल होते हैं और हर रितल 34 तोले का है। अगर तोलों के अंदर आप देखना चाहते हैं तो हर रितल 34 तोले का है। और मैंने बताया था कि मुद और मन ये एक ही चीज का नाम है, तो अगर सा जो है 4 मुद है तो इसी तरह ये 4 मन भी है भाई। और मैंने बताया था कि ये सा जो है तोलों के एतबार से 270 तोले है और शेर के एतबार से देखा जाए तो 3 शेर 6 छटांक है यानी 1.5 पाव है, यानी 3.5 शेर से कुछ कम है। तो ये निस्फ सा गंदुम देगा या खजूर या जौ देना चाहता है तो 1 सा भाई। और अगर दोनों में से निसफ निसफ दे दे तो भी काफी है। मसलन एक फकीर को निस्फ सा गंदुम देनी थी, वो निस्फ सा गंदुम नहीं बल्कि इस निस्फ सा का भी निसफ यानी रुबए सा देता है और दूसरी तरफ से खजूर को साथ मिलाता है और खजूर का 1 सा देना था वो भी निसफ देता है। तो निसफ मकदार किससे ले ली? खजूर से। और निसफ मकदार किससे ले ली? गंदुम से। तो इस तरह भी मकदार पूरी कर सकता है। और अगर जिहार वाले ने किसी और से कहा कि मेरी तरफ से 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो और वो दूसरे ने खिला दिया तो फिर भी कफारा अदा हो जाएगा। वजह यह कि ये जाहिर में तो उसको वकील बना रहा है कि मेरी तरफ से खाना खिला दो, लेकिन हकीकत में वो कर्ज मांग रहा है और कर्ज पर कब्जा जरूरी होता है। तो यहां पर वो जो फकीर कब्जा करेगा तो अव्वलन इस जिहार वाले की तरफ से कब्जा करेगा, जिसने हुक्म दिया था इसकी तरफ से कब्जा करेगा, तो गोया ये मालिक बन गया, इसकी तरफ से कब्जा आ गया और फिर जो फकीर है वो अपने लिए उसका कब्जा हो जाएगा। तो लिहाजा इस तरह ये कफारा अदा हो जाएगा। और अगर जिहार वाला मिस्कीनों को खाना खिलाता है, उनको गल्ले या खजूर वगैरह का मालिक नहीं बनाता बल्कि उनको खाना खिलाता है 2 वक्त का, तो खाना भी खिला सकता है भाई। और अगर एक ही मिस्कीन को एक शख्स इकट्ठा 60 मिस्कीनों का गल्ला दे देता है, कहते हैं नहीं इकट्ठा देगा तो फिर अदा नहीं होगा, हां इसको अलग अलग हर रोज एक एक फकीर के बकदर देता रहे तो हर रोज गोया ये एक नए मिस्कीन के दर्जे में होगा क्योंकि हर रोज नई हाजत पेश आती है खाने की। तो लिहाजा 60 दिन तक इसको हर रोज निस्फ सा गंदुम देता रहे या 1 सा खजूर देता रहे तो भी कफारा अदा हो जाएगा। और अगर खाना भी खिलाना चाहता है तो 60 रोज तक इस एक मिस्कीन को सुबह और शाम खाना खिलाता रहे तो उससे भी कफारा अदा हो जाएगा भाई। और अगर एक ही दिन के अंदर 60 मरतबा उसके सामने खाना लाकर रखता है तो इस सूरत में बिल इत्तेफाक कफारा अदा नहीं होगा क्योंकि दिन में 2 मरतबा खाने की हाजत पेश आती है, इससे ज्यादा तो हाजत ही पेश नहीं आती। और अगर एक ही दिन में मुतफर्रिक करके वो निस्फ सा गंदुम एक फकीर को देता है 60 मरतबा तो इसमें भी बास कहते हैं अदा नहीं होगा भाई, जबकि बास कहते हैं इस सूरत में अदा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें अगरचे फकीर की हाजत तो नई फकीर की हाजत तो नई नहीं है लेकिन अदा करने वाले की हाजत नई है। एक मरतबा अदा करने के बाद फिर उसको हाजत है वो और अदा करता है, फिर उसके बाद हाजत है, तो लिहाजा फकीर की हाजत तो नई नहीं हो रही लेकिन मालिक बनाने वाले की हाजत नई हो रही है, उसको हाजत है, तो इस एतबार से ये कफारा अदा हो जाएगा भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया था अगर खाने के दौरान सोहबत कर ली खाने के दौरान तो फिर नए सिरे से खाना खिलाने की जरूरत नहीं, यही खाना काफी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं वईदा अतअमा अन ज़िहारैन सित्तीन मिस्कीनन लिकुल्लि मिस्कीनिन सअअ मिन बुर्रिन लम युजज़िहु इल्ला अन वाहिदिन मिनहुमा इंद अबी हनीफा व अबी यूसुफ रहिमहुमुल्लाह व क़ाला मुहम्मदुन रहिमहुल्लाह तआला युजज़िहु अनहुमा। सूरत मसला ये, एक शख्स ने दो जिहार कर लिए, उसकी मसलन दो बीवियां हैं और दोनों से उसने जिहार कर लिया है, अब वो उस पर दो कफारे आ गए, तो अब उसको गुलाम भी मुयस्सर नहीं और वो 60 रोजे भी नहीं रख सकता क्योंकि बीमार है या बहुत बूढ़ा है। अब वो हर जिहार के कफारे में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना चाहता है, तो अब उसने यूं किया कि एक मिस्कीन का हिस्सा बनता है निस्फे सा, तो वो हर मिस्कीन को एक एक सा गंदुम दे रहा है, यानी दोनों जिहारों का कफारा मिलाकर दे रहा है जी। तो एक फकीर का हिस्सा कितना बनता है? निस्फे सा, लेकिन इसने पूरा सा दे दिया ताकि दोनों जिहारों का एक फकीर को अदा हो गया, फिर अगले फकीर को भी पूरा सा दे दिया, तो इस तरह उसने 60 मिस्कीनों को एक एक सा अदा किया ताकि ये दोनों जिहारों का कफारा हो जाए। और उसने नियत क्या की है? दोनों जिहारों के कफारे की। तो शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि एक ही जिहार का कफारा अदा होगा, दोनों का अदा नहीं। अगर दोनों का वो अदा करना चाहता है तो अलग अलग करके दे, यानी निस्फे सा पहले अलग दे एक मोहताज को और फिर दोबारा उसको निस्फे सा अलग दे दे भाई। इस तरह हर फकीर को वो अलग अलग करके अदा करेगा तो फिर इस तरह दो कफारे अदा होंगे। लेकिन अगर वो इकट्ठा एक एक सा दे रहा है और नियत दो कफारों की कर रहा है तो दो कफारे अदा नहीं होंगे, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, दोनों कफारे अदा हो जाएंगे, दोनों कफारे अदा हो जाएंगे, क्योंकि उसने दो कफारों की नियत की है और ये जो मिकदार वो अदा कर रहा है इसे दोनों कफारे अदा हो सकते हैं। एक एक सा अदा कर रहा है तो निसफ सा एक जिहार का हो गया और निसफ सा दूसरे जिहार का हो गया, और 60 मिस्कीनों को इस तरह अदा करेगा तो दोनों कफारे अदा हो गए। लेकिन शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि नहीं, एक जिहार का कफारा अदा होगा। वजह यह कि यहां दोनों कफारों की जिन्स एक है, वजह यह दोनों कफारों की जिन्स एक है, दोनों जिहार के कफारे हैं। जब दोनों जिहार के कफारे हैं तो जिन्स एक है, और जब जिन्स एक हो तो वहां पर याद रखो तायीन की नियत लग्व होती है, उसका कोई एतबार नहीं जी। वो तो तायीन कर रहा है हर फकीर को देते हुए दो कफारों की तायीन कर रहा है, लेकिन कफारे दोनों एक ही जिन्स के हैं, दोनों जिहार के कफारे हैं, और जब कफारों की जिन्स एक हो तो वहां तायीन की नियत लग्व होती है, उसका कोई एतबार नहीं। तो यूं समझेंगे वो सिर्फ कफारे की नियत से दे रहा है, दो कफारों की नियत नहीं कर रहा, बस सिर्फ क्या कर रहा है, ये जो गंदुम दे रहा है सिर्फ कफारे की नियत है उसके जहन में, एक और दो की तायीन उसके जहन में नहीं। और जब सिर्फ असले कफारे की नियत से जब यह अदा करेगा तो फिर बिल इत्तेफाक एक कफारा अदा होगा, जबकि इसके मुकाबले में अगर वो अलग अलग करके देता है, अलग अलग करके देता है, तो फिर इस सूरत में बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं कि फिर दोनों कफारों से अदा हो जाएगा। मसलन एक ही मिस्कीन को पहले निस्फे सा अलग देता है और फिर निस्फे सा अलग, फिर दूसरा मिस्कीन आता है उसको निस्फे सा अलग देता है और फिर निस्फे सा अलग देता है, तो इस तरह अलग अलग करके देगा दो कफारों की नियत के साथ, तो फिर तो दोनों अदा हो जाएंगे हमारे तीनों अइमा के नजदीक। लेकिन अगर इकट्ठा करके देगा, पूरा पूरा सा मिला कर दे रहा है, तो एक कफारा अदा होगा शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक, जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के नजदीक दोनों का कफारा अदा हो जाएगा। इसी तरह अगर दोनों कफारों की जिन्स अलग हुई, मसलन एक शख्स पर दो कफारे हैं लेकिन एक कफारा है जिहार का और एक कफारा है रोजा तोड़ने का, उसने रमजान का रोजा तोड़ दिया था जानबूझकर, तो इस सूरत में भी आप जानते हैं कि रमजान का रोजा भी जानबूझकर तोड़ दिया जाए तो वहां पर भी दो माह के मुसलसल रोजे रखना पड़ेंगे बतौर कफारे के। और याद रखना ये सिर्फ रमजान के रोजे में ऐसा है, अगर रमजान का रोजा कोई तोड़ेगा तो वो कफारे के तौर पर दो माह के मुसलसल रोजे भी रखना पड़ेंगे, अगर एक रोजा भी बीच में छूट गया फिर नए सिरे से रोजे रखना पड़ेंगे। तो ये 60 रोजे भी रखना पड़ेंगे कफारे वाले, और एक वो जो रोजा तोड़ा है उसकी कजा भी करना पड़ेगी। तो ये सिर्फ रमजान के रोजे के अंदर ये कफारा आता है। इसके अलावा अगर कोई भी रोजा हो, चाहे किसी ने मन्नत मानी है या रमजान की कजा कर रहा है वगैरह, उनको तोड़ने से कफारा नहीं आएगा भाई, वहां उन्हीं की कजा करना पड़ेगी लेकिन कफारा नहीं। लेकिन रमजान के रोजे में कफारा भी आता है। तो अब एक शख्स है, उसने जिहार का भी कफारा अदा करना है और उसने रमजान का एक रोजा भी जानबूझकर तोड़ दिया था, उसका भी कफारा अदा करना है। अब दोनों कफारों की जिन्स अलग अलग है, एक जिहार का कफारा और एक इफ्तार का कफारा है रमजान के रोजे तोड़ने का। तो याद रखो, अब चूंकि कफारों की जिन्स अलग अलग है लिहाजा यहां तायीन नीयत मोतबर है, यहां तायीन नीयत मोतबर है। अब ये शख्स हर मिस्कीन को एक एक सा गंदुम दे रहा है और नीयत ये करता है कि इसमें से आधी गंदुम जिहार के कफारे के तौर पर है और आधी गंदुम इफ्तार के कफारे के तौर पर है, तो यहां चूंकि दोनों कफारों की जिन्स अलग है लिहाजा ये तायीन नीयत मोतबर है, तो अब दोनों कफारे अदा हो जाएंगे
जी।
जब इस तरह वो 60 मिस्कीनों को एक एक सा गंदुम दे देगा दोनों की नीयत के साथ, तो दोनों कफारे अदा हो जाएंगे। तो हासिल कलाम क्या, शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक जिनसे वाहिद के अंदर तायीन नीयत का एतबार नहीं, नीयत लगव है, और अलग अलग जिनसे हो तो वहां तायीन नीयत मोतबर है भाई। बात समझ में आ गई। देखिए भाई कहते हैं वह ईदा अतमान जिहारैन सित्तीन मिस्कीना, और जब जिहार करने वाले ने दो जिहारों से 60 मिस्कीनों को खिलाया, लिकुल्ल मिस्कीन इंसा अमिन बुर्रिन, हर मिस्कीन को उसने एक सा गंदुम में से दिया, लम युजज़िहु इल्ला वाहिदिन मिन्हुमा, तो ये कफारा उसके लिए काफी नहीं है मगर एक जिहार से ही, उन दोनों में से एक जिहार से यह कफारा होगा। इंद अबी हनी फतवा अबी यूसुफ रहमहुमल्लाह, शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक, वकाल मुहम्मदुन रहमहुल्लाह ताला युजज़िउहु अन्हुमा, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह दोनों जिहार से यह कफारा काफी हो जाएगा। व इन अतअम ज़ालिका अन इफ्तारिन व ज़िहारिन, और अगर उस जिहार करने वाले ने यह खिलाया अन इफ्तारिन व ज़िहारिन, इफ्तार और जिहार के कफारे से, यानी दो अलग अलग जिन्स के कफारे हैं, अब उसी तरह एक एक सा दे रहा है, तो कहते हैं अजज़ाहु अन्हुमा, तो ये दोनों से काफी हो जाएगा। लहू इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील ये है कि अन्ना बिल मुअद्दा वफा अम बिहिमा, मुअद्दा वो जिसको अदा कर दिया गया, वफा उन वफा का माना है तकमील भाई, अदायगी और तकमील, तो वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अन्ना बिल मुअद्दा वफा अम बिहिमा, कि वो जो अदा कर दिया गया यानी हर मिस्कीन को जो एक सा अदा किया गया, वफा अम बिहिमा, इसके जरिए दोनों कफारों की तकमील हो रही है, दोनों कफारों की अदायगी हो रही है। वल मसरूफ इलैहि महल्लुन लहुमा, और वल मसरूफ इलैहि, और जिसकी तरफ इसको फेरा गया है यानी जिसको यह अदा किया जा रहा है, महलुन लहुमा, वो इन दोनों कफारों का महल है यानी वो मिस्कीन
जी।
वो मिस्कीन जो है वो दोनों कफारों का महल है, तवज्जो है जी। तो लिहाजा जो मिकदार अदा कर रहा है उसके जरिए भी दोनों की अदायगी हो सकती है, और जिसको अदा कर रहा है वो महल भी है दोनों कफारों का, तो लिहाजा अदायगी हो जाएगी। तो कहते हैं लहू इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्ना बिल मुअद्दा वफा अम बिहिमा, कि वो जो अदा किया जा रहा है उसके जरिए दोनों की तकमील हो जाती है। वल मसरूफ इलैहि महल्लुन लहुमा, और वो जिस पर खर्च किया जा रहा है वो भी दोनों कफारों का महल है यानी वो जो मिस्कीन है। फयक़ऊ अन्हुमा, तो ये दोनों से कफारे वाके हो जाएंगे। कमाल इख्तलफ़ सबब औ फर्रक़ा फी दफ़, जैसे कि सबब मुख्तलिफ हो, जैसे अगर सबब मुख्तलिफ था, मसलन एक जिहार का कफारा है और एक इफ्तार का कफारा है, तो उसमें तो शेखैन रहमहुमल्लाह भी फरमाते हैं कि मिलाकर भी देगा लेकिन नीयत दोनों की है तो दोनों अदा हो जाएंगे। तो यहां पर भी जब दोनों की नीयत कर रहा है और मिकदार भी पूरी है और जिसको दे रहा है वो उसका महल भी है, तो दोनों की अदायगी हो जाएगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला फरमाते हैं जैसे दो मुख्तलिफ जिंसों के अंदर फकीर को ये मिकदार दी जाए तो दोनों अदा हो जाते हैं, तो एक जिंस के अंदर भी ये दोनों कफारे अदा हो जाएंगे। या ये कहते हैं इसी तरह है जैसे एक ही मिस्कीन को अलग अलग करके दे, पहले निस्फे सा दिया एक कफारे का, फिर निस्फे सा दिया दूसरे कफारे का, तो जैसे अलग अलग करके एक ही फकीर को इतनी मिकदार देंगे तो दोनों कफारे अदा हो जाएंगे, तो मिलाकर देने से भी दोनों कफारे अदा हो जाएंगे। सूरत समझ में आ रही है? तो कहते हैं फयक़ऊ अन्हुमा, तो ये दोनों कफारों से वाक़े हो जाएगा। कमा लविख्तलफ़ सबब, जैसे कि कफारे का सबब जो मुख्तलिफ हो उस सूरत में होता है, औफर रकफी दाफ़ई, या जैसे उस सूरत में होता है जब देने के अंदर जुदाई कर दे, दोनों कफारों का अलग अलग अदा करे। वलहुमा शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नियत फिल जिन्स वाहिदी लघ्वुन, कि नीयत जो है एक जिन्स के अंदर लघ्व है। क्या माना एक जिंस के अंदर नीयत लगव है? मुराद यह है तायीन की नीयत। कफारे की नीयत तो जरूरी है, उसके बगैर तो कफारा ही नहीं अदा होगा, लेकिन तायीन की नीयत कि ये जो मैं दे रहा हूं ये उस कफारे का भी है और इस कफारे का भी है, या यूं कहो ये उस जिहार का भी है और इस जिहार का भी है, ये जो तायीन नीयत है ये जिनसे वाहिद में मोतबर नहीं होती। लिहाजा आगे साहिब हिदाया बतलाएंगे आपको। एक आदमी है, उसने दो बीवियों से जिहार कर लिया, उस पर दो कफारे आ गए, उसने एक ही गुलाम आजाद किया, एक ही गुलाम दोनों की नीयत से आजाद कर दिया जी। तो कहते हैं इस सूरत में आधा गुलाम एक की तरफ गोया वो तकसीम कर रहा है और आधा गुलाम दूसरे की तरफ, लेकिन एक ही जिंस है कफारों की, क्योंकि दोनों कफारे किसके हैं? जिहार के। तो और जब एक ही जिंस हो तो वहां नीयत मोतबर नहीं, लिहाजा इसने तो आधे आधे गुलाम की तकसीम कर दी कि आधा गुलाम इस जिहार की तरफ से आधा गुलाम इस जिहार की तरफ से, लेकिन ये नीयत मोतबर नहीं, ये बाद में जिस जिहार से चाहे इसको करार दे दे, बाद में कह देता है कि ये फला बीवी से जो मैंने जिहार किया था उसकी तरफ से है, तो वो बीवी इसके लिए हलाल हो जाएगी और दूसरी अभी भी हराम है। मालूम हुआ एक ही जिंस के कफारे हों तो एक ही जिंस के अंदर नीयत लग होती है, उसका एतबार नहीं। अगर नीयत मोतबर होती तो इसने तो गुलाम आजाद करते हुए दोनों की नीयत की है और दोनों की नीयत से तो दोनों का कफारा अदा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक के अंदर पूरा गुलाम आजाद करना है और अब तो गुलाम यह आजाद कर चुका है, मामला तो इसके हाथ से निकल गया, यह क्या कर चुका है? इसने तो गुलाम आजाद कर दिया और नीयत दोनों की है, तो अगर नीयत मोतबर होती तो एक कभी कफारा अदा नहीं होना था और मामला भी इसके हाथ से निकल गया। अब बाद में किसी एक की तायीन नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो नीयत तो आजादी के वक्त नीयत जरूरी होती है, बाद में तो नीयत से कफारा अदा नहीं होगा भाई। मालूम हुआ जिनसे वाहिद के अंदर तायीन नीयत लगव है उसका कोई एतबार नहीं। अगर अभी तायीन कर भी दी है कि ये दोनों की तरफ से मैं आजाद कर रहा हूं, लेकिन ये मोतबर ही नहीं, बाद में वो किसी एक की भी तायीन कर सकता है, तवज्जो है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक शख्स पर रोजा तोड़ने का भी कफारा है और जिहार का भी कफारा है और इसने गुलाम आजाद करते हुए कहा कि यह दोनों की तरफ से है, अब चूंकि जिनसे अलग अलग हैं लिहाजा यह नीयत मोतबर है और यह आधा गुलाम एक कफारे की तरफ से अदा हुआ और आधा दूसरे की तरफ से अदा हो गया, लेकिन एक भी कफारा अदा नहीं हुआ क्योंकि निस्फे गुलाम से तो कफारा अदा नहीं होगा, वो तो पूरे गुलाम से कफारा अदा होगा। अब बाद में यह चाहता है कि ओहो यह तो मुझसे गलती हो गई, एक भी कफारा अदा नहीं हुआ, अब बाद में चाहता है कि इस कफारे को मैं किसी एक की तरफ फेर दूं, या वो जो रोजा तोड़ा था उसका कफारा बना दूं, या जो जिहार किया था उसका कफारा बना दूं। नहीं भाई, अब आप नहीं कर सकते, मामला आपके हाथ से निकल चुका है, मामला आपके हाथ से, क्योंकि दो जिनसे मुख्तलिफ जिनसे थी और वहां आपने नीयत की थी और वहां नीयत मोतबर थी, जब नीयत मोतबर थी तो दोनों से यह गुलाम आजाद हुआ है, एक से नहीं, तो अब आप एक की तरफ इसको नहीं फेर सकते क्योंकि नीयत पहले की जाती है, बाद में नीयत नहीं की जाती। भाई फर्क समझ में आ रहा है? अगर एक ही जिंस है, दोनों जिहार हैं और उसके अंदर उसने गुलाम आजाद किया है और दोनों की नीयत की है, लेकिन फिर भी ये नीयत लगव है, ये दोनों से नहीं होगा। बाद में किसी एक की वो नीयत कर लेता वो तो उसी का कफारा हो जाएगा और दूसरे जिहार का कफारा बाकी रह गया। तो कहते हैं वल्लहुमा, और शेखैन रहिमहुमल्लाह की दलील यह है कि अन्ना नीयत फिल जिन्सिल वाहिदि लगवुन, कि तायीन नीयत, नीयत से क्या मुराद है, मुतलक नीयत नहीं, मुतलक नीयत तो होनी चाहिए, मैं कफारा अदा कर रहा हूं, अगर कफारे की नीयत ही नहीं की तो फिर तो कफारा ही नहीं अदा होगा, कफारे की नीयत यहां मुराद नहीं है, तायीन नीयत लगव है। तवज्जो है, वो एक एक सा दे रहा है और तायीन कर रहा है, ये दोनों का कफारा है, ये तायीन नीयत लगव है, ये तायीन नीयत दोनों का कफारा नहीं अदा होगा, एक का कफारा अदा होगा। तो वलहुमा शेखैन रहमहुमल्लाह की दलील है कि अन्न नीयत फिल जिनसिल वाहिद लगवन, कि जिनसे वाहिद के अंदर नीयत लगव है, यानी तायीन नीयत लगव है, वह फिल जिनसैन मोतबरतुन, और दो जिनसों के अंदर नीयत मोतबर है, यानी तायीन नीयत मोतबर है। वह इदा लगत इन नीयतु, और जब नीयत लगव हो गई, वल मुअद्दा यस्रहु कफारतन वाहिदतन, और वो जो अदा किया गया है वो सलाहियत रखता है एक कफारे की। जिहार करने वाला हर मिस्कीन को एक एक सा दे रहा है और नीयत दोनों जिहारों के कफारे की कर रहा है, लेकिन जब जिनसे वाहिद हो तो तायीन नीयत लग्व हो गई, तो तायीन नीयत लग्व हो गई, और जब तायीन नीयत लग्व हो गई और ये जो अदा कर रहा है ये एक का कफारा बनने की भी सलाहियत रखता है, एक का कफारा बनने की भी सलाहियत रखता है। भाई किस तरह एक का कफारा बनने की सलाहियत रखता है, कहते हैं भाई देखिए, हमें शरीयत ने 60 मिस्कीनों को खिलाने का हुक्म दिया है और हर मिस्कीन को कितना दिया जाएगा अगर गंदुम देना चाहता है, निसफे सा, लेकिन क्या निसफे सा देना ही जरूरी है या इससे जायद भी दिया जा सकता है, जायद भी कम नहीं होना चाहिए, जायद दिया जा सकता है भाई, तो लिहाजा यूं समझा जाएगा ये एक ही का कफारा दे रहा है, अलबत्ता हर एक को कुछ जायद दे रहा है जी। बनता तो निसफ सा था, ये एक एक सा देता जा रहा है, कुछ जायद देता जा रहा है, तो लिहाजा ये जो अदा कर रहा है इसके अंदर उसने तायीन की नीयत की लेकिन वो नीयत लगव हो गई, जब नीयत लगव हो गई तो ये मिकदार तो एक का कफारा बनने की सलाहियत रखता है, तो जब सलाहियत रखता है एक का कफारा बनने की तो एक ही का कफारा इसको करार दिया जाएगा भाई। कहते हैं वह इदा लगत इन नीयत, और जब नीयत लगव हो गई, वल मुअद्दा यस्रहु कफारतन वाहिदतन, और वो जो अदा किया गया है वो सलाहियत रखता है एक कफारे की, लिअन्न निसफ साई अदन अल मकादीरी, इसलिए क्योंकि निसफ सा जो है वो तो कम से कम मिकदार है, मिकदारों में से कम मिकदार है, इतना देना पड़ेगा, फयम नाउन नुकसान दून ज्यादती, तो ये कमी को रोकता है ना कि ज्यादती को, कि इसे कम नहीं दे सकते, ज्यादा दे सकते हैं, ज्यादती को मना नहीं करता, फयकाउ अनहा, तो लिहाजा ये जो अदा किया गया है ये एक ही कफारे से अदा होगा, एक ही कफारे से वाके होगा, कमा इदा नवा असल कफारा थी, जैसे कि वो जिहार करने वाला नीयत करे असले कफारा की। भाई एक है असले कफारा की नीयत, एक है तायीन नीयत। तायीन नीयत क्या थी, कि ये दोनों जिहारों के मैं कफारे दे रहा हूं, हर एक की दोनों की तायीन कर रहा था, और एक असले नीयत, असले नीयत यह है कि तायीन नहीं की, बस मैं ये कफारे के तौर पर दे रहा हूं। जब मुतलक कफारे की नीयत से देगा तो एक जिहार का कफारा अदा होगा, दोनों का नहीं, यह तो बिल इतफाक है, जब मुतलक कफारे की नीयत से अदा करेगा फिर तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं एक ही का कफारा अदा होगा, हां अगर दोनों की तायीन के साथ अदा करेगा तो फिर इमाम मोहम्मद फरमाते हैं दोनों का कफारा अदा हो जाएगा। तो कहते हैं फयकाउ अनहा, तो ये एक ही कफारे से वाके होगा ये जो इसने अदा किया है, कमा इदा नवा असल कफारती, ये इसी तरह है जैसे ये शख्स असले कफारा की नीयत करे, तायीन की नीयत ना करे, सिर्फ असले कफारे, ये एक एक सा दे रहा है लेकिन सिर्फ कफारे की नीयत करता है, तो इस सूरत में तो बिल इतफाक एक ही का कफारा अदा होगा, दोनों का नहीं भाई। तो कहते हैं कमा इदा नबा असल कफारा थी, जैसे कि वो शख्स असले कफारा की नीयत करे और तायीन की नीयत ना करे, बेखिलाफ इमा इदा फर्रका फी दफई, बखिलाफ उस सूरत के कि जब उस शख्स ने जुदा कर दिया, फी दफई देते हुए, पहले निसफे सा दिया और फिर दोबारा अलग निस्फ सादिया दूसरे जिहार की नीयत से, तो उस सूरत में दोनों से अदा हो जाएगा। तो कहते हैं बिखिलाफ इमा इदाफर रका फिद दफई, बखिलाफ उस सूरत के किसने जुदा कर दिया फिद दफई हवाले करने में, लि अन्नहु फिद दफअती सानियती फी हुक्मी मिस्कीन इन आखरा, इसलिए क्योंकि दूसरी मरतबा देने में दूसरे मिस्कीन के हुक्म में होगा। पहले एक दफा एक मिस्कीन इस मिस्कीन को दे दिया निस्फ सा, फिर जब दोबारा निस्फ सा दे रहा है तो ये गोया एक मिस्कीन आखर है, कोई दूसरा मिस्कीन है, तो इस तरह दोनों कफारे अदा हो जाएंगे भाई। हर मिस्कीन को दो दो दफा दे रहा है और दूसरी दफा जब दे रहा है तो गोया एक नया मिस्कीन है, तो गोया 60 मिस्कीनों को नहीं दिया, 120 को दे दिया, और अब 120 को दे दिया है तो दोनों कफारे अदा हो गए। आगे देखिए वमा वजबत अलैहि कफारता ज़िहारिन फअअतका रकबतैन, सूरत मसला ये, एक शख्स पर दो कफारे आए थे जिहार के, उसने दो गुलाम आजाद कर दिए लेकिन तायीन नहीं की कि ये वाला गुलाम किस जिहार से है और ये वाला गुलाम किस जिहार से है, तो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कफारे अदा हो गए, दोनों कफारे अदा हो गए क्योंकि दोनों की जिंस एक है, और जब जिंस एक हो तो वहां तायीन की जरूरत नहीं कि ये वाला गुलाम फलां का जिहार का और ये वाला फलां जिहार का, इसकी जरूरत नहीं भाई। तो कहते हैं वमा वजबत अलैहि कफारता जिहारिन, और जिस शख्स पर जिहार के दो कफारे वाजिब हो गए, फअअतका रकबतैन, उसने दो गुलाम आजाद कर दिए, ला यनवी अन इहदाहुमा बिअइनिहा, और ये शख्स नियत नहीं करता उन दोनों जिहारों में से किसी एक के बारे में भी, बिअइनिहा उस मुअय्यन रकबे की, किसी मुअय्यन रकबे की वो तायीन नहीं करता कि यह रकबा उस जिहार की तरफ से है और ये वाला रकबा उस जिहार से, तो कहते हैं लायन वियान इहदा हुमा बियाई निहा, और वो नियत नहीं करता इन दोनों जिहारों से किसी एक किसी मुअय्यन गुलाम की, जाजान हुमा, तो ये गुलाम ये दोनों कफारों से जायज हो जाएंगे। वकदा इदा साम अरबाता अशहूरिन, और इसी तरह है अगर इस शख्स ने 4 माह रोजे रखे, तायीन नहीं कि पहले 2 महीने किस जिहार के हैं और दूसरे 2 महीने किसके हैं, क्योंकि दोनों की जिंस एक है, दोनों जिहार के कफारे हैं, तो वहां तायीन नियत लगव है, उसका कोई एतबार ही नहीं है। तो कहते हैं वकदा इजा साम अरबाता अशहूरिन, इसी तरह जब उसने 4 माह रोजे रखे, औ अतअमा मिअतन वईशरीन मिस्कीना, या उसने 120 मिस्कीनों को खाना खिला दिया, जाजा, तो ये भी जायज है। लिअन्न अलजिन्स मुत्तहिदुन, इसलिए क्योंकि यहां कफारे की जिंस मुत्तहिद है, फला हाजत इला नियतिन मुअय्यनतिन, लिहाजा कोई हाजत नहीं है किसी मुअय्यन नियत की, असल नियत तो होनी चाहिए कि यह मैं कफारे में कर रहा हूं लेकिन तायीन की हाजत नहीं है भाई। व इन आतका अन्हुमा रकबतन वाहिदतन, व इन आतका, ये वो मसला आ गया जो अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था भाई, कहते हैं व इन आतका अन्हुमा रकबतन वाहिदतन, और अगर इस शख्स ने एक ही गुलाम या बांदी को आजाद किया, अन्हुमा दोनों कफारों से, व इन आतका अन्हुमा, और अगर इस शख्स ने इन दोनों कफारों से आजाद किया, रकबतन वाहिदतन एक ही रकबा को, औ साम शहरैन और या 2 माह के रोजे रखे, कितने जिहार हैं इस पर 2, और गुलाम एक आजाद किया या सिर्फ 2 माह के रोजे रखे और नियत दोनों की है कि ये दोनों से है, तो कहते हैं ये जिन्स चूंकि एक है कफारों की लिहाजा तायीन नियत लगव है, लिहाजा ये दोनों से नहीं होगा, तो बाद में ये जिस एक जिहार से भी इसको करना चाहे उसी की तरफ इसको फेर दे। अगर वो चाहता है फलां बीवी से जो मैंने जिहार किया था ये कफारा उसकी तरफ से हो गया, तो वो बीवी हलाल हो गई और दूसरी अभी भी हलाल नहीं है भाई। तो कहते हैं व इन आतका अन्हुमा रकबतन वाहिदतन औ साम शहरैन, और अगर इसने उन दो जिहारों से एक ही रकबा आजाद की या 2 माह के रोजे रखे, कान लहू अन यजअल ज़ालिका अन अय्यिहिमा शाअ, तो इस शख्स के लिए जायज है कि वो इस कफारे को करार दे दे, अन अय्यिहिमा शाअ, उन दो जिहारों में से जिसके लिए भी चाहे, इस कफारे को वो उन दो जिहारों में से जिसके लिए भी चाहे करार दे दे। तवज्जो है, दोनों की जिंस एक थी और गुलाम आजाद करते हुए उसने दोनों की नियत की है, या 60 रोजे रखते हुए उसने दोनों की नियत की है, लेकिन यह नियत तो लगव है, لہذا بعد میں یہ نیت کر سکتا ہے، جس زہار کی طرف بھی اس کو پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے بجائے دو الگ الگ جنسیں ہوئیں کفاروں کی، ایک کفارہ ہے زہار کا اور ایک کفارہ ہے روزے کا، روزہ توڑا تھا، تو اب یہ شخص ایک غلام آزاد کرتا ہے دونوں کی طرف سے، تو اب جنسیں مختلف ہیں لہذا نیت معتبر. جب نیت معتبر ہے تو یہ دونوں طرف سے آزاد ہوا غلام، جب دونوں طرف سے آزاد ہوا تو نصف غلام ایک کفارے میں ہے اور نصف غلام دوسرے کفارے میں ہے، لہذا ایک بھی کفارہ ادا نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کفارے کے اندر پورا پورا غلام آزاد کرنا ضروری تھا. اور اب بعد میں یہ نیت کرتا ہے کہ چلو اچھا میں اس غلام کو پھر زہار کی طرف پھیر دیتا ہوں، کہتے ہیں نہیں، اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، دو الگ الگ جنسیں تھیں اس نے آزاد کر دیا، جب آزاد کر رہا تھا اس وقت نیت ضروری تھی، بعد میں نیت کا اعتبار نہیں، لہذا یہ غلام دونوں کی طرف سے ہے یا یہ روزے دونوں کی طرف سے ہیں، لہذا کسی ایک کی طرف اب وہ ان کو نہیں پھیر سکتا بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان اعتق عن زہار و قتل، اور اگر اس نے غلام یا باندی کو آزاد کیا، عن زہار و قتل، زہار اور قتل سے، بھائی جس طرح زہار کا کفارہ تحریر رقبہ ہے، اسی طرح قتل کا کفارہ بھی کیا ہے؟ تحریر رقبہ. تو ایک شخص نے ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا ہے اور زہار اور قتل دونوں کے کفاروں کی نیت کر لی، تو لہذا یہ دونوں سے ہو جائے گا، اور جب دونوں سے ہوا تو نصف ایک کفارے میں ہو گیا اور نصف دوسرے کفارے میں، تو ایک بھی کفارہ ادا نہیں ہوا، کیونکہ ہر کفارے میں پورا پورا غلام آزاد کرنا ضروری تھا، اور بعد میں بھی اب وہ اب ان میں سے کسی ایک کی طرف اس کو نہیں پھیر سکتا، کیونکہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان اعتق عن زہار و قتل، اور اگر ایک ہی غلام یا باندی کو آزاد کیا زہار سے بھی اور قتل سے بھی، لم یجز عن واحد منہما، تو ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایک کفارہ بھی ادا نہیں ہوا. وقال ظفر رحمہ اللہ تعالی لا یجزئہ عن احدہما فی الفصلین، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کسی ایک سے بھی دونوں فصلوں میں، دونوں مسئلوں میں. بھائی ایک صورت کیا تھی؟ دو زہار تھے اور ان کے لیے ایک غلام کو آزاد کیا یا 60 روزے رکھیں اور دونوں کی نیت کی ہے، اور تو ہمارے نزدیک یہ نیت لغو ہے، بعد میں بھی کسی ایک کی طرف پھیرنا چاہے تو پھیر سکتا ہے. لیکن اگر دونوں کفاروں کی جنس الگ الگ ہے، ایک قتل کا کفارہ ہے اور ایک زہار کا کفارہ ہے، اور اس میں ایک غلام یا باندی کو دونوں کی طرف سے آزاد کرتا ہے، تو لہذا یہ دونوں کی طرف سے آزاد ہوگا، وہ بعد میں اب کسی ایک کی طرف اس کو نہیں پھیر سکتا. توجہ ہے؟ تو امام ظفر فرماتے ہیں چاہے کفاروں کی جنس متحد ہو چاہے مختلف ہو، دونوں صورتوں میں جب اس نے دونوں کی نیت کی ہے تو دونوں کی طرف سے غلام آزاد ہوگا، جب دونوں کی طرف سے غلام آزاد ہوگا تو دونوں کفاروں میں سے ایک بھی ادا نہیں ہوا بھائی، کیونکہ ہر کفارے میں پورے غلام کا آزاد کرنا ہے، نصف کا آزاد کرنا نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجزئہ عن احدہما فی الفصلین، کہ یہ کافی نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی، فی الفصلین دونوں فصلوں میں، یعنی چاہے متحد الجنس ہو یا مختلف الجنس ہو. وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہو ان یجعل ذالک عن احدہما فی الفصلین، کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو کر دے دونوں فصلوں میں کسی ایک سے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کفارات کی جنس ایک ہی ہے، ہمارے نزدیک تو کفارات کی جنس الگ ہے، سبب الگ ہوگا تو کفارے کی جنس بھی الگ. ایک کفارہ آیا ہے روزہ توڑنے کی وجہ سے، روزہ توڑنے کی وجہ سے اس میں بھی 60 روزے آئے، زہار کی وجہ سے بھی مثلاً کیا آئے 60 روزے، تو ہم کہیں گے یہ والے 60 روزوں کی جنس الگ ہے کیونکہ ان کا سبب الگ ہے، یہ روزہ توڑنے کی وجہ سے آئے ہیں، اور دوسرے زہار کی وجہ سے جو 60 روزے آئے ہیں ان کی جنس الگ ہے کیونکہ ان کا سبب زہار ہے بھائی. تو کفارے کی جنس ہمارے نزدیک بدل جاتی ہے سبب کے بدلنے سے، سبب الگ تو کفارہ بھی الگ جنس شمار ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمام کفارات کی ایک ہی جنس ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے گناہ پر پردہ ڈالنا، गुनाह के असर को खत्म करना, इसने जिहार किया है, कफारा देगा तो इस गुनाह का असर खत्म हो जाएगा, और इसी तरह इसने रोजा तोड़ा है, कफारा देगा तो ये गुनाह का असर खत्म हो जाएगा, उस गुनाह पर पर्दा पड़ जाएगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक तमाम कफारात की जिन्स एक ही है, और जब जिन्स एक हो तो बाद में जिस तरफ भी आप फेरना चाहें फेर सकते हैं। जैसे दो जिहार थे, एक गुलाम आजाद किया दोनों की नियत करके, तो दोनों में से जिसकी तरफ फेरना चाहे इसको फेर सकता है। इसी तरह अगर एक कत्ल का कफारा है और एक जिहार का कफारा है और ये एक ही गुलाम आजाद करता है, तो हमारे नजदीक कफारों की जिन्स अलग है, लिहाजा यहां पर नियत मोतबर है। तो जब दोनों की नियत की है तो दोनों तरफ से आजाद होगा, एक की तरफ अब नहीं फेर सकता। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं दोनों की जिन्स एक ही है क्योंकि दोनों कफारे हैं, तो लिहाजा बाद में भी जिसकी तरफ फेरना चाहे फेर सकता है। वो कत्ल का कफारा करार दे देगा तो वो कत्ल का कफारा अदा हो गया और जिहार का रह गया, और अगर जिहार का उसको करार दे देता है तो जिहार का कफारा अदा हो गया और कत्ल का रह गया। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं लहू अय्यज अला जालिका अन अहदिहिमा फिल फसलैन, के उसके लिए जायज है कि वो दोनों फसलों के अंदर इन दोनों में से किसी एक से उसको कर दे। लिअन्नल कफाराती कुल्लहा बेअतिबार इत्तेहादिल मकसूद जिन्सुन वाहिदुन, लिअन्नल कफाराती कुल्लहा, इसलिए क्योंकि सारे के सारे जो कफारात हैं बेअतिबार इत्तेहादिल मकसूदी, मकसूद के मुत्तहिद होने के एतबार से जिन्सुन वाहिदुन, एक ही जिन्स हैं। कि इनका मकसूद क्या है, इन सब का मकसूद एक ही है, और वह गुना पर पर्दा डालना है, गुना के असर को खत्म करना है। भाई तो देखिए मैंने इबारत क्या पढ़ी, लिअन्नल कफाराती कुल्लहा, ये कुल्लहा ये ताकीद है कफारात की, और मुअक्कद ताकीद का इराब एक होता है। तो आपके जहन में आएगा कि अल कफाराती ये तो मजरूर है और कुल्लहा ये तो मंसूब है, और ताकीद का तो वही इराब होता है जो मुअक्कद का होता है। तो याद रखना ये अलकफाराती ये मजरूर नहीं है, ये भी मंसूब है क्योंकि ये अन्ना का इसम है, और अलबत्ता ये जमा मुअन्नस सालिम है, और जमा मुअन्नस सालिम का नसब आता ही कसरा की शक्ल में है, तो ये है नसब ही, ये जर नहीं है। तो ये अलकफाराती ये भी मंसूब और कुल्लहा ये भी मंसूब है, तो मुअक्कद और ताकीद का एक ही एराब है। तो कहते हैं लिअन्न अलकफाराती कुल्लहा बेअतिबार इत्तेहादिल मकसूदी जिन्सुन वाहिदुन, इसलिए क्योंकि सारे कफारात जो हैं वो मकसूद के मुत्तहिद होने के एतबार से एक ही जिन्स हैं। वजह कौली जुफर रहमहुल्ला, और इमाम जुफर रहमहुल्ला के कौल की वजह यह है, वो फरमाते थे किसी एक की तरफ भी नहीं फेर सकता, चाहे मुत्तहिदुल जिन्स हो चाहे मुख्तलिफुल जिन्स हो। कहते हैं वजह कौली जुफर रहमहुल्ला, और इमाम जुफर रहमहुल्ला के कौल की वजह यह है कि अन्नहु अअतका अन कुल्लि ज़िहारिन निस्फ अल-अब्दी, कि उसने आजाद किया है हर जिहार से निस्फ गुलाम को। वलैसा लहू अन यजअला अन अहदिहिमा, और उसके लिए अब यह जायज नहीं है कि यह इस एताक को करार दे दे अन अहदिहिमा किसी एक से, बादमा अअतका अन्हुमा, बाद इसके कि जब इसने दोनों से आजाद किया था, जब दोनों से आजाद किया था तो ये दोनों से ही शुमार होगा, अब किसी एक की तरफ वो इसको नहीं फेर सकता। भाई तो कहते हैं वलैसा लहू अन यजअला अन अहदिहिमा बादमा अअतका अन्हुमा, और उसके लिए ये जायज नहीं है कि इन दोनों में से किसी एक के लिए उसको करार दे दे, बादमा अअतका अन्हुमा, बाद इसके कि जब इसने दोनों से आजाद किया था, जब दोनों से आजाद किया तो दोनों से ही होगा, किसी एक से वो इसको करार नहीं दे सकता। लिखुरूज इल अम्री मिन यदिही, इसलिए क्योंकि मामला उसके हाथ से निकल गया है, जब आजाद कर रहा था उस वक्त नियत करनी चाहिए थी भाई, बाद में तो नियत की भी जाए उसका कोई एतबार नहीं है भाई। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना और हमारी दलील यह है कि अननियत तायीन फिल जिनसिल मुत्तहिदी गैर मुफीदिन, कि तायीन की नियत जो है फिल जिनसिल मुत्तहिदी एक ही जिन्स के अंदर गैर मुफीदिन, वो फायदा नहीं देती। एक ही जिन्स के अंदर तायीन नियत गैर मुफीदिन, ये फायदा नहीं देती। फतल हो तो ये लगव हो जाएगी। वफिल जिन्स मुख्तलिफ मुफीदुन, और मुख्तलिफ जिन्सों के अंदर तायीन नियत फायदा देती है। वख्तिलाफुल जिन्स फिल हुक्म वहुवल कफारतुहा हुना बिख्तिलाफ इस सबबी, यहां से ये बयान कर रहे हैं कि भाई कत्ल के अंदर भी गुलाम या बांदी को आजाद करना है और जिहार के अंदर भी गुलाम या बांदी को आजाद करना है, तवज्जो है। तो लिहाजा ये तो कफारे दोनों एक जैसे हैं, तो फिर आप इनको अलग अलग जिंसें कैसे करार देते हैं? तो वजह मैंने जिक्र कर दी कि कफारे के सबब को देखा जाएगा, कफारा आया किस वजह से है। अगर वो सबब अलग तो ये जिंस भी अलग है। तो जिहार की वजह से भी गुलाम को आजाद करना पड़ता है और कत्ल की वजह से भी गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा, लेकिन हर एक का सबब अलग है तो ये इसको अलग जिंस शुमार करेंगे। तो कहते हैं वख्तिलाफुल जिंसी, और जिंसों का मुख्तलिफ होना फिल हुक्मी हुक्म में। भाई कत्ल का कफारा भी क्या है? फतहरीरु रकबति मोमिना, मोमिन गुलाम या बांदी को आजाद करना। और जिहार का कफारा भी क्या है? फतहरीरु रकबतिन, एक गुलाम या बांदी को आजाद करना है। तो लिहाजा ये जो जिनसे मुख्तलिफ हैं ये हम हुक्म लगा रहे हैं। जाहिर में तो दोनों में क्या है? जाहिर में तो दोनों में तहरीर रकबा है, लेकिन हम हुक्म लगा रहे हैं कि ये मुख्तलिफ हैं। बात समझ में आ गए? तो हुक्म के एतबार से ये जिनसे मुख्तलिफ हैं, और वो किस एतबार से हैं मुख्तलिफ हैं? सबब के एतबार से। तो कहते हैं वख्तिलाफुल जिन्स फिल हुक्मी, और ये जिन्सों का मुख्तलिफ होना फिल हुक्मी, किस चीज में? हुक्म के अंदर। यानी ये हम हुक्म उसमें जो लगा रहे हैं कि जिनसे मुख्तलिफ हैं, वह हुवल कफारतु हा हुना, और वो जिन्स जिसकी मुख्तलिफ है वो क्या चीज है यहां पर? वह हुवल कफारतु हा हुना, यहां कफारा है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बिख्तिलाफी सबबी, वो सबब के मुख्तलिफ होने से होता है। वख्तिलाफुल जिन्स फिल हुक्मी, और जिन्स का मुख्तलिफ होना हुक्म में बिख्तिलाफ सबबी, ये किस वजह से होता है? सबब के मुख्तलिफ होने से। तो दरमियान में वह हुवल कफारतु हाहुना, दरमियान में बतला दिया कि यहां पर जिस जिन्स की बात हो रही है वो यहां कफारा है। भाई बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वख्तिलाफुल जिन्स फिल हुक्मी, और हुक्म के अंदर जिन्स का मुख्तलिफ होना वह हुवल कफारतु हाहुना, और वो जिन्स यहां पर कफारा है। तो इसका हुक्म में मुख्तलिफ होना बिख्तिलाफ इस सबब, वो सबब के मुख्तलिफ होने से होगा। नजीरुल अव्वली, पहले की नजीर, यानी मुत्तहिदुल जिन्स की नजीर। भाई कहते हैं इदा साम यौमन, सूरत मसला ये, एक शख्स जो है उस पर रमजान के दो रोजे बाकी हैं, उसके जिम्मे कजा हैं, वो सफर पर था तो रमजान के दो रोजे ना रख सका, अब बाद में वो इनकी कजा करना चाहता है, तो ये दोनों रोजे मुत्तहिदुल जिन्स हैं। दोनों की कजा क्यों आई? दोनों की कजा क्यों आई? रमजान का रोजा छोड़ा है, पहला भी इसीलिए वाजिब और दूसरा भी इसीलिए वाजिब है, तो दोनों मुत्तहिदुल जिन्स हैं। जब मुत्तहिदुल जिन्स हैं तो वहां तायीन की कोई जरूरत नहीं। ये शख्स जब बाद में कजा करे तो तायीन की जरूरत नहीं कि ये वो मैंने पहले रोजा जो छोड़ा था उसके लिए कजा कर रहा हूं, और ये जो मैंने दूसरा रोजा छोड़ा था अब मैं उसकी कजा कर रहा हूं, नहीं, कोई तायीन की जरूरत नहीं। बस एक रोजा कजा की नीयत से रख ले तो उन दोनों में से एक हो गया, एक रह गया, फिर दूसरा भी रख लेगा तो दूसरा भी हो जाएगा। तो कहते हैं वह नजीर उल अव्वली, और पहले की नजीर, यानी जिनकी जिन्स मुत्तहिद हो। इदा साम यौमन, जब किसी शख्स ने एक रोजा रखा, फी कजा रमजाना, कजा रमजान में, कि वह रमजान की कजा कर रहा है, आई यौमैन, दो दिन से। कजा कितने हुए थे? दो रोजे, तो दो दिन कजा से उसने एक रोजा रखा, युज्जी उहु अन कजा यौमिन वाहिदिन, तो ये काफी हो जाएगा उसके लिए एक दिन की कजा से, यहां कोई तायीन की जरूरत नहीं। जैसे एक रोजा रखेगा तो एक की कजा हो गई, तो जब दूसरे की कजा करेगा तो वो भी उसकी भी कजा हो जाएगी। भाई वह नजीर उसानी, और दूसरे की नजीर, यानी जिनकी जिनसे मुख्तलिफ हों। इदाका नाले हिस्सोमुल कजा इवन नजरी, जैसे एक शख्स जो है उस पर कजा का भी रोजा है, वन नजरी, और मन्नत का भी रोजा है, उसने वैसे ही अल्लाह के लिए अपने ऊपर एक रोजा लाजिम कर लिया था कि मैं अल्लाह के लिए एक रोजा रखूंगा, तो ये रोजा उस पर लाजिम हो गया। या इसने कहा था अगर मेरा फुला काम हो गया तो मैं एक रोजा रखूंगा, और फिर वो काम हो गया तो अब इसके जिम्मे एक रोजा लाजिम है, और नीज इसके जिम्मे रमजान का एक कजा रोजा भी है। अब दोनों की जिनसें अलग अलग हैं भाई, एक रोजा रमजान का रोजा छोड़ने की वजह से कजा करना पड़ेगा, और एक रोजे का सबब मन्नत है, तो दोनों की जिनसें अलग हैं। जब जिनसें अलग हैं तो लिहाजा अब रात से ही तायीन करना पड़ेगी कि ये मैं रोजा रमजान का रोजा रख रहा हूं या मन्नत का रख रहा हूं, वो रात से ही तायीन जरूरी है। अगर नियत नहीं करेगा तो किसी एक से भी वो नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वह नजीर उस्सानी, और दूसरे की नजीर जो है इदाकान आले ही सौमुल कजा इवन नजरी, कि जब इस शख्स पर एक कजा का रोजा है वन नजरी और एक मन्नत का रोजा है, फैनहू ला बुद्दफी ही मिनत तमीज, तो इसके अंदर जो है इम्तियाज करना जरूरी है, इनके अंदर फर्क करना जरूरी है नियत के जरिए। वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। बाबुल लियान, ये बाब है लियान के बारे में। अच्छा भाई, बाबुल लियान, भाई लियान का जिक्र आ गया भाई। देखिए, एक शख्स अगर किसी अजनबिया औरत पर जिना की तोहमत लगाए या किसी अजनबी शख्स पर जिना की तोहमत लगाए, तो इस सूरत में वो शख्स इसको काजी के पास ले जा सकता है कि काजी साहब, इसने मुझ पर जिना का इल्जाम लगाया है। तो काजी इस शख्स से गवाह तलब करेगा कि चार गवाह पेश करो। अगर ये शख्स गवाह न पेश कर सके तो फिर इस पर हद कजफ जारी की जाएगी, यानी इसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे भाई, और नीस जिंदगी भर अब इसकी गवाही किसी भी मामले में कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई खावन जो है अपनी बीवी के पास किसी आदमी को आते जाते देख ले या जिना करते देख ले, अब उसके पास तो कोई गवाह नहीं जी। उसके पास तो कोई गवाह मौजूद नहीं है, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने लियान का हुक्म नाजिल फरमाया कि अगर खावन बीवी पर जिना का इल्जाम लगाता है तो अब खावन से चार गवाह नहीं तलब किए जाएंगे। खावन कहां से चार गवाह लेकर आएगा, लिहाजा वहां दोनों में लियान करवाया जाएगा। और लियान आगे साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे, लियान ये है वो चार शहादतें होंगी उसमें। पहले खावन चार शहादतें देगा कसम के साथ कि मैं गवाही देता हूं कि वल्लाह मैंने इस औरत पर जो जिना का इल्जाम लगाया है मैं उसमें सच्चा हूं। फिर दोबारा इसी तरह कहेगा कि मैं गवाही देता हूं वल्लाह मैंने इस औरत पर जो जिना का इल्जाम लगाया है मैं इसमें सच्चा हूं। चार इस तरह गवाहियां दे देगा खावन। तो उसके बाद पांचवीं मर्तबा कहेगा कि अगर मैंने इस औरत पर जो जिना का इल्जाम लगाया है उसमें मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो गई, तो ये खावंद कहेगा। उसके बाद फिर बीवी इसी तरह कहेगी, बीवी कहेगी कि मैं गवाही देती हूं कि वल्लाह इस शख्स ने मुझ पर जो जिना का इल्जाम लगाया है ये इसमें झूठा है। तो इस तरह चार शहादतें देगी कसम के साथ। तो चार शहादतें जब दे दे उसके बाद पांचवीं मर्तबा में वो कहेगी कि इस शख्स ने मुझ पर जो जिना का इल्जाम लगाया है अगर इसके अंदर यह सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो भाई। तो इसको कहते हैं लियान भाई। और इसके बाद फिर काजी इनमें जुदाई करवा देगा, और जब जुदाई करवा देगा तो अब ये दोनों एक दूसरे पर हराम हो गए, अब आपस में निकाह नहीं कर सकते। लेकिन अगर खावंद अपने आप को झुटला देता है या बीवी अपने आप को झुटला देती है बाद में कहती है कि मैंने झूठ बोला था, तो फिर इस सूरत में निकाह की गुंजाइश होगी, फिर दोबारा निकाह कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये साहिबे हिदाया जिक्र फरमाएंगे। तो चुनाचे इनका हुक्म अल्लाह कुरान में बयान फरमाते हैं सूरह नूर के अंदर भाई। सूरह नूर के अंदर आगाज ही में अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीन यरमूनल मुहसनाती, और वो लोग जो पाकदामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाते हैं, सुम्मलम या तू भी अरबाती शुहदा, फिर उसके बाद वो चार गवाह न लेकर आए, फजली दू हम समानी न जल्दा, तो फिर इनको 80 कोड़े लगाओ, वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, और इनकी गवाही कभी भी कबूल न करो। तो इंदल अहनाफ हद के अंदर 80 कोड़े भी लगाए जाएंगे और फिर जिंदगी भर अब इस शख्स की गवाही किसी भी मामले में कबूल नहीं की जाएगी। तो गवाही का कबूल न करना यह बाकायदा हद का हिस्सा है इंदल अहनाफ। बात समझ में आ गई। तो पहले यही हुक्म था भाई कि जो शख्स भी किसी औरत पर जिना का इल्जाम लगाएगा उसको 4 गवाह पेश करना पड़ेंगे वरना उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। लेकिन बाद में अल्लाह ने दूसरा हुक्म नाजिल फरमाया कि अगर कोई खावन जो है वो अपनी बीवी पर इस तरह का इल्जाम लगाता है तो उसके पास तो 4 गवाह नहीं हो सकते, तो उसके लिए अल्लाह ने अलग हुक्म नाजिल फरमाया। तो वो आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीन यरमूना अज़वाजहुम, और वो लोग जो तोहमत लगाते हैं अज़वाजहुम अपनी बीवियों पर, वलम यकुल लहुम शुहदा इल्ला अनफुसुहुम, और उनके पास और गवाह नहीं है सिवाय अपनी जानों के, वो खुद ही गवाह हैं और कोई गवाह नहीं है। फशहादतु अहदिहिम अरबाउ शहादातिम बिल्लाही, तो इनमें से हर एक की गवाही जो है वो 4 गवाहियां होंगी बिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ, यानी अल्लाह की कसम के साथ कि इन्नहु लमिन सादिकीन, कि वो सच्चों में से है। वल खामिसतु अन्न लानतल्लाहि अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन, और 5वीं मर्तबा वो ये कहेगा कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से है। वयदरउ अन्हल अदाबा, और औरत से भी सजा जो है वो खत्म हो जाएगी, टल जाएगी। अंतशहद अरबा शहादातिम बिल्लाह, कि वो गवाही दे भाई 4 गवाहियां बिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ। इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि ये शख्स झूठों में से है भाई। वल खामिसत अन्न गजब अल्लाह अलैहा इन कान मिन अस्सादिकीन, और 5वीं मर्तबा ये कहेगी कि उस पर अल्लाह का गजब हो अगर ये शख्स सच्चों में से है भाई। बात समझ में आ गई। तो अगर कोई खावन बीवी पर जिना का इल्जाम लगाता है तो उसके लिए अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल फरमाया और इसको लियान कहते हैं। क्या कहते हैं? लियान भाई। तो ये जो लियान है ये इंदल अहनाफ, ये शहादतों का नाम है जिनके साथ कसम भी खाई जाएगी भाई। शहादत भी है और साथ कसम भी खाई जाएगी। तो कहते हैं बाबुल लियानी قال اذا قذف الرجل امراته بالزنا, साहिब कुदूरी फरमाते हैं اذا قذف الرجل امراته بالزنا, जब एक शख्स ने तोहमत लगाई अपनी बीवी पर जिना की, وهما من اهل الشهاده, इस हाल में कि ये दोनों अहले शहादत में से हैं, यानी दोनों में शहादत की सलाहियत है भाई, गवाह बन सकते हैं। गवाह कौन बन सकता है? जहां निकाह का बाब हमने शुरू किया था वहां आपने पढ़ा था कि निकाह में 2 गवाहों का होना जरूरी, और उसकी शराइत जिक्र हुई थी। कौन सी शराइत हैं? आजाद हो, गुलाम जो है वो गवाही नहीं दे सकता, आकिल हो, आकिल हो मजनून निकल गया, बालिग हो, ना बालिग निकल गया, और मुसलमान हो तो काफिर निकल गया भाई। तो गवाह के अंदर ये 4 शर्तों का होना जरूरी है, फिर ही उसकी गवाही कबूल की जाएगी। तो कहते हैं वहुमा मिन अहली शहादत, इस हाल में कि ये दोनों क्या हो, ये खावंद और बीवी दोनों अहले शहादत में से होने चाहिए भाई। देखिए ये जो खावंद ने कलिमात कहने हैं वो भी शहादतें हैं, और बीवी ने जो कलिमात कहने हैं वो भी शहादतें हैं, लिहाजा ये अहले शहादत होंगे तो फिर ही ये शहादतें अदा कर सकते हैं। अगर ये अहले शहादत ही नहीं है तो फिर लियान भी नहीं होगा भाई, फिर लियान नहीं होगा भाई। लियान में जरूरी है कि दोनों अहले शहादत हों भाई। मसलन बीवी जो है वो यहूदी या ईसाई है तो वो तो मुसलमान ना हुई, हालांकि गवाह के लिए क्या जरूरी? आजाद, आकिल, बालिग और मुसलमान होना। तो अगर बीवी यहूदी या ईसाई है और उस पर खावंद ने जिना की तोहमत लगाई है तो फिर अब लियान नहीं होगा, क्योंकि बीवी अहले शहादत ही नहीं है भाई। तो फिर यहां पर खावंद पर हद जारी होगी, हद कजफ जारी होगी। तो कहते हैं वहुमा मिन अहली शहादत, इस हाल में कि ये दोनों अहले शहादत में से हैं। वल मरअतु मिम्मन युहद्दु काज़िफुहा, और औरत उन औरतों में से है, युहद्दु काज़िफुहा, कि हद लगाई जाती है उस पर तोहमत लगाने वाले पर, यानी पाक दामन औरत है भाई। अगर एक औरत जो है उसने पहले जिना किया था और वो साबित भी हो गया था और उसको जिना की सजा भी मिली थी, 100 कोड़े भी उसको लग गए थे, तो इस औरत को अगर कोई जानिया कहता है तो फिर इस सूरत में हद कजफ नहीं आती भाई, क्योंकि यह औरत पाक दामन नहीं है, यह जिना कर चुकी है पहले भाई। तो लिहाजा जरूरी है कि खावन जब बीवी पर जिना की तोहमत लगाए तो लियान तभी होगा जब दोनों अहले शहादत भी हों और नीस बीवी उन औरतों में से हो कि उस पर जिना का इल्जाम लगाने वाले पर हद आती हो भाई, हद आती हो। तो उसके लिए याद रखो, याद रखो, इहसान उर रजम, औरत मोहसना होनी चाहिए। क्या मोहसन? मोहसन का माना है पाकदामन। मर्द हो तो मोहसन, औरत हो तो मोहसना, सौद के साथ है। और ये फिर याद रखना, ये एहसान भाई, ये एहसान दो किस्म पर है, एक एहसानुल कज़फ है और एक एहसानुल रजम है। एक एहसानुल कज़फ है और एक एहसानुल रजम है। एहसानुल कज़फ ये औरत के अंदर होगा तो फिर ही इस पर जो जिना का इल्जाम लगाएगा उस पर हद जारी होगी, 80 कोड़े लगेंगे। अगर औरत मोहसना नहीं, पाकदामन नहीं है, उसमें एहसानुल कज़फ मौजूद नहीं, तो फिर उस पर हद नहीं आएगी। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की, एक औरत है, उसने जिना किया था और वो साबित भी हुआ था और उसको 100 कोड़े भी लगे थे। इस औरत को अगर कोई जानिया कहता है तो इस औरत को जानिया कहने वाले पर हद कज़फ नहीं लगेगी, क्योंकि वो सच बोल रहा है, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा। भाई बात समझ में आ गई? लिहाजा ये जो बीवी है ये उन औरतों में से होनी चाहिए कि जिस पर जिना का इल्जाम लगाने वाले पर हद आती हो, यानी ये मोहसना हो। क्या हो? मोहसना। और इसमें पांच शर्तें हैं, पांच शर्तें, वही जो गवाह के अंदर चार शर्तें थी, आजाद, आकिल, बालिग, मुसलमान, और पांचवीं शर्त है पाक दामन हो, अफीफा हो, यानी इसने जिना नहीं किया, यानी इस पर जिना साबित नहीं हुआ। भाई तो ये एहसानुल कज़फ है भाई, जिस औरत में ये सिफात होंगी उस पर कोई इल्जाम लगाएगा जिना का तो उसको गवाह पेश करने पड़ेंगे, वरना उस पर हद कज़फ लगेगी। तो कहते हैं वलमर अतुमी मैं हद काजिफुहा, और औरत जो है वो उन औरतों में से हो कि हद लगाई जाती हो उन पर तोहमत लगाने वाले को, औ नफा नसब अवलदीहा, या खावन ने उस औरत के औलाद की नसब की नफी कर दी, औरत ने बच्चे को जन्म दिया और खावन ने कहा यह मेरी औलाद नहीं, ये मेरी औलाद नहीं, तो ये औलाद की नफी भी हकीकत में जिना ही का इल्जाम है भाई। उसने कहा तो नहीं कि तूने जिना किया है, लेकिन औलाद की नफी करने का माना ही यह है, मालूम हो वो बीवी पर जिना का इल्जाम लगा रहा है भाई। तो कहते हैं औ नफा नसब वलदीहा, या खावंद ने उस औरत के औलाद के नसब की नफी की। याद रखो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि खावंद अपने से औलाद के नसब की नफी कर सकता है, लेकिन यह बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में, जब बच्चा पैदा हुआ उन्हीं दिनों में खावन कहता है यह मेरी औलाद नहीं, तो अब काजी के पास जाएंगे और जाकर लियान करेंगे, और लियान के बाद फिर काजी इनमें जुदाई भी करवा देगा और उस बच्चे का नसब खावन से काटकर सिर्फ औरत के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब यह सिर्फ इस औरत का बच्चा शुमार होगा, खावन का बच्चा शुमार नहीं होगा भाई, लेकिन ये बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में इस तरह वो नसब की नफी कर सकता है, बाद में नफी नहीं कर सकता भाई। तो कहते हैं औ नफा नसब वलदीहा, या खावन ने उस औरत की औलाद के नसब की नफी कर दी, व तालबत हु बिमूजबिल कज़फी, व तालबत हु, और औरत ने खावन से मुतालबा किया, बिमूजबिल कज़फी, तोहमत लगाने के मुक्तजा का, कि तुमने मुझ पर तोहमत लगाई है, अब चलो मेरे साथ काजी के पास मुकदमा कर देती है वो भाई। तो कहते हैं वतालबत हु बिमूजबिल कज़फी, और उस औरत ने खावन से मुतालबा किया, बिमूजबिल कज़फी, मूजब कहते हैं मुक्तजा यानी हुक्म, तो उसने मुतालबा किया बिमूजबिल कज़फी, कज़फ के हुक्म का। तो मूजब का तर्जमा हुक्म के कर लें या मुक्तजा के, दोनों तर्जमे आप कर सकते हैं। तो कहते हैं वतालबत हु बिमूजबिल कज़फी, और इस औरत ने कज़फ के मुक्तजा या कज़फ के हुक्म का मुतालबा किया, फअलैहि लियान, तो उस खावन पर लियान वाजिब है, वल असल, और असल यह है, अन्न लियान आइंदा ना शहादा तुम मुअक्कदा तुम बिल ऐमानी, कि लियान जो है हमारे नजदीक शहादा तुन ऐसी शहादतें हैं, मुअक्कदा तुम बिल ऐमानी, जिनको पुख्ता किया गया हो कसमों के साथ, शहादत भी होगी और कसम भी होगी, तो हमारे नजदीक लियान जो है वो ऐसी शहादतें हैं, मुअक्कदा तुम बिल ऐमानी, जिनको कसमों के साथ पुख्ता किया गया हो, मकरून तुम बिल लानी, और वो मिली हुई हो लानत के साथ, قائمتم مقام حد القذف فی حقه, اور یہ جو شہادتیں ہیں یہ قائم مقام ہے حد قذف کے, فی حقه خاون کے حق میں, و مقام حد زنا فی حقها, اور حد زنا کے قائم مقام ہے عورت کے حق میں. تو یہ شہادتیں مرد کے لیے حد قذف کے قائم مقام ہیں اور عورت کے لیے حد زنا کے قائم مقام ہیں. توجہ ہے, خاوند پر حد قذف آنی تھی کیونکہ اس نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا ہے, لیکن یہ شہادتوں کی وجہ سے, یہ لعان کی وجہ سے اب اس پر حد قذف نہیں آئے گی بھائی. تو یہ حد قذف ہی کے قائم مقام ہے. تو کہتے ہیں قائمتم مقام حد القذف فی حقہ, یہ جو شہادتیں ہیں یہ حد قذف کے قائم مقام ہیں, فی حقہ اس مرد کے حق میں, اس خاوند کے حق میں, و مقام حد زنا فی حقہ, اور یہ زنا کے قائم مقام ہے اس عورت کے حق میں. تو یہ خاوند کے لیے حد قذف کے قائم مقام ہیں یہ شہادتیں اگر اس نے جھوٹ بولا ہے, اور عورت کے لیے حد زنا کے قائم مقام ہے اگر اس نے جھوٹ بولا ہے بھائی. لقوله تعالى, اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے, ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم, ولم يكن لهم شهداء, اور نہ ہو ان کے لیے اور گواہ, الا انفسهم سوائے اپنی جانوں کے, یعنی اپنے علاوہ ان خاوندوں کے پاس اور کوئی گواہ نہ ہو. والاستثناء انما يكون من الجنس. اچھا بھائی, بات یہ چل رہی ہے کہ ہمارے نزدیک لعان شہادتوں کا نام ہے. لعان کس کا نام ہے؟ شہادتوں کا نام ہے. اب اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم, اور نہ ہو ان کے لیے اور گواہ, الا انفسهم سوائے اپنی جانوں کے. تو یہ الا انفسهم یہ ہے مستثنا, الا کے بعد جو آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا. اور جو ماقبل میں آئے اس کو کہتے ہیں مستثنا منہ. اور اصل یہ ہے مستثنا جو ہوتا ہے وہ مستثنا منہ کی جنس میں سے ہوتا ہے. تو ماقبل میں جب شہداء کا ذکر ہے اور ماباد میں انفسهم وہ خاوندوں کی ذات ذکر ہے, معلوم ہوا یہ بھی شہداء میں سے ہیں, گواہوں میں سے ہیں. یہ بھی کس میں سے ہیں؟ گواہوں میں سے ہیں. اور گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جو گواہی دیتا ہے. معلوم ہے ان کا جو کلام ہے خاوندوں کا وہ شہادتیں ہیں بھائی. دلیل سمجھ میں آئی؟ دلیل کیا ہوئی؟ کہ انفسهم اس کا استثناء کیا گیا شہداء سے, اور یہ مستثنا ہے, اور مستثنا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مستثنا منہ کی جنس میں سے ہوتا ہے, اور ماقبل میں تو گواہوں کا ذکر ہے. معلوم ہے یہ انفسهم بھی کون مراد ہیں؟ گواہی مراد ہے. معلوم ہے یہ خود گواہ ہیں. اور گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو گواہی دیتا ہے. معلوم ہوا ان کے جو کلمات ہیں یہ بھی گواہی ہی ہیں بھائی. تو اس اعتبار سے یہ گواہ ہیں بھائی. تو کہتے ہیں والاستثناء انما یکون من الجنس, اور استثناء جو ہوتا ہے وہ اپنی ہی جنس سے ہوتا ہے. وقال اللہ تعالی, اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت جو ہے وہ چار شہادتیں ہوں گی, باللہ اللہ کے نام کے ساتھ. تو دیکھا یہاں بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں, فشہادت احدہم, ان میں سے ہر ایک کی شہادت جو ہے. تو دیکھو ان کے کلام کو شہادت کہا گیا, معلوم لعان شہادتوں کا نام ہے بھائی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے, نص علی الشہادتی والیمینی, یہ نص ہے شہادت اور یمین پر, کہ یہ لعان شہادت اور یمین کا نام ہے. فقلنا, تو پس ہم کہتے ہیں, الرکن ہوا شہادت المؤکدت بالیمینی, کہ لعان کا رکن جو ہے وہ ایسی شہادت ہے, المؤکدت بالیمینی, جس کو پختہ کیا گیا ہو قسم کے ساتھ, جس کو مضبوط کیا گیا ہو قسم کے ساتھ. ثم قرن الرکن فی جانبہ باللعن, پھر اس رکن کو, یہ جو یمین کے ساتھ جو شہادت ہے, اس رکن کو ملایا گیا ہے, فی جانبہ خاوند کی جانب میں, باللعن لعنت کے ساتھ, خاوند کی جانب میں اس کو لعنت کے ساتھ ملایا گیا ہے. لو کان کاذبا, اگر وہ جھوٹا ہو, وہ قائم مقام حد القذف, اور یہ حد قذف کے قائم مقام ہے اس خاوند کے حق میں. وفی جانبها بالغضب, اور اس رکن کو ملایا گیا ہے عورت کی جانب میں, بالغضب غضب کے ساتھ. وہ قائم مقام حد الزنا, اور یہ عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے بھائی. آگے دیکھیے, اذا ثبت هذا, جب یہ بات ثابت ہو گئی, کیا بات ثابت ہوئی؟ کہ لعان ہمارے نزدیک शहादतों का नाम है कस्मों के साथ भाई। तो जब यह बात साबित हो गई, नकूलू हम कहते हैं लाबुद्द अन यकूना मिन अहले शहादती, कि जरूरी है कि खामंद और बीवी दोनों अहले शहादत में से हों। लिअन्न रुकन फीहि शहादतु, इसलिए क्योंकि लियान के अंदर रुकन जो है वो शहादत है, गवाही है जी। वो क्या है? गवाही है। जब गवाही है तो इस मियां बीवी दोनों में शहादत की अहलियत होनी चाहिए, तभी लियान हो सकता है, वैसे लियान नहीं हो सकता। तो ये माना है, कहते हैं नकूलु हम कहते हैं लाबुद्द अन यकूना मिन अहले शहादती, जरूरी है कि ये दोनों अहले शहादत में से हों। लिअन्न रुकन फीहि शहादतु, इसलिए क्योंकि लियान के अंदर जो रुकन है वो शहादत है। वलाबुद्द अन तकून ही मिम्मन युहद्दु काज़िफुहा, और जरूरी है कि ये औरत उन औरतों में से हो कि उन पर तोहमत लगाने वाले पर हद लगाई जाती हो, उन पर हद लगाई जाती हो। मैंने आपको बतलाया था भाई कि काजी जो सजाएं देता है वो दो किस्म की हैं। कुछ सजाएं अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं, उनको हुदूद कहते हैं, जैसे हद कजफ है, हद जिना है, हद सरिका वगैरह है, चोरी कर ले उसका हाथ काटा जाता है, डाकू के हाथ और पांव मुखालिफ से मत काटे जाते हैं, और इसी तरह जिना करने वाले को अगर गैर शादीशुदा है 100 कोड़े लगाए जाते हैं, और अगर शादीशुदा हो तो रजम किया जाता है। इसी तरह हद कजफ है, कोई किसी पर जिना का इल्जाम लगाए तो 80 कोड़े लगाए जाते हैं। तो ये सब हुदूद हैं, तो ये सजाएं अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं, इनको हुदूद कहते हैं। और बाकी सजाएं जो काजी अपनी तरफ से देता है उनको ताजीर कहते हैं, ताजीर। तो कहते हैं वलाबुद्द अन तकून ही मिम्मन युहद्दु काज़िफुहा, और जरूरी है कि यह औरत उन औरतों में से हो कि उन पर तोहमत लगाने वाले को हद लगाई जाती हो। लिअन्नहु क़ाइमुन फी हक़िही मक़ाम हद्दिल क़ज़्फ़, इसलिए क्योंकि ये लियान जो है उस खावन के हक में ये कायम मकाम है हद क़ज़्फ़ के। किसके कायम मकाम है ये? जो खावन लियान कर रहा है ये हद कजफ के कायम मकाम है, गोया इस खावन पर हद कजफ लग रही है, और हद कजफ तो तभी लगती है जब किसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाया हो। लिहाजा औरत का पाक दामन होना, मोहसना होना जरूरी है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु क़ाइमुन फी हक़िही मक़ाम हद्दिल क़ज़्फ़, इसलिए क्योंकि ये लियान खावन के हक में जो है हद क़ज़्फ़ के कायम मकाम है। फला बुद्द मिन इहसानिहा, लिहाजा औरत का मोहसना होना जरूरी है। तो इहसानुल क़ज़्फ़ क्या है? इहसानुल क़ज़्फ़ कि औरत क्या हो, आजाद हो, आकिला हो, बालिगा हो, मुसलमान हो और आफीफा हो, पाक दामन हो। ये पांच शर्तें हैं। तो कहते हैं फला बुद्द मिन इहसानिहा, लिहाजा इस औरत का मोहसना होना जरूरी है। वह यजिबू भी नफील वलदी, और इसी तरह लियान वाजिब हो जाता है औलाद की नफी से भी। लिअन्नहु लम्मा नफा वलदहा सारा काज़िफन लहा ज़ाहिरन, इसलिए क्योंकि खावन ने जब इस औरत की औलाद की नफी कर दी तो सारा काज़िफन लहा, तो ये उस पर तोहमत लगाने वाला हो गया ज़ाहिरन, जाहिर के एतबार से ये जाहिरन उस पर जिना ही की तोहमत लगा रहा है। वला युअतबर इहतिमाल अन यकूना जी, ये एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये कि खावंद ने औलाद की नफी की है, लेकिन औलाद की नफी करने से तो जिना का इल्जाम लाजिम नहीं आता, जिना का इल्जाम लाजिम नहीं आता। बाज औकात औरत से वती भी शुबा भी कर ली जाती है, उससे भी तो औलाद हो सकती है। औरत से वती भी शुबा कर ली जाए, मसलन आप पढ़ चुके हैं वती भी शुबा कि एक औरत को तलाक मिल गई, उसने इद्दत के अंदर किसी आगे किसी और से निकाह कर लिया, तो लिहाजा ये निकाह नहीं हुआ। जब निकाह नहीं हुआ तो अब ये जो दूसरा खावंद है ये सोहबत करेगा, तो ये वती भी शुबा हुई भाई। तो वती भी शुबा की वजह से भी तो औलाद हो सकती है, और इस सूरत में यह औलाद उसी दूसरे खावंद की शुमार होगी, क्योंकि उसने तो जिना की नीयत से सोहबत नहीं की थी, उसने तो समझा था मेरा निकाह हो गया है, तो यह बच्चा उस खावन का शुमार होगा। तो यहां एहतराज होता है कि खावन ने अपनी औलाद की नफी की है, तो अपनी औलाद की नफी से तो आप फौरन आप बात को जिना की तरफ न लेकर जाएं, बल्कि यहां यह भी तो एहतमाल है कि यह औलाद किस वजह से हुई हो, वती भी शुबा की वजह से हुई हो, और वती भी शुबा की वजह से जो औलाद हो वह वलदु जिना नहीं कहलाती, वो उसी दूसरे खावन की औलाद शुमार होती है। तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया कि भाई ये एक एहतमाल है, वती बिशुबा के लिए सबूत चाहिए भाई, कि पहले वती बिशुबा का सबूत तो हो, और यहां तो कोई वती भी शुबा का सबूत नहीं है, इस औरत ने तो किसी से और निकाह नहीं किया है भाई, बात समझ में आ गई। लिहाजा वती भी शुबा का जब सबूत नहीं है तो इसको जिना पर ही महमूल करना पड़ेगा। खामद ने जब औलाद की नफी की है और वती भी शुबा का कोई सबूत नहीं है तो यह जिना ही का इल्जाम लगा रहा है। कहते हैं यह इसी तरह है जैसे कोई शख्स, एक बच्चा है उसके वालिद का पता है सबको कि यह फलां का बच्चा है, एक आदमी आया और उसने आकर कहा उस लड़के के बारे में, कहता है बाप के बारे में उसके कि यह फलां का बेटा नहीं है, ये फलां का बेटा नहीं है, तो इसको भी जिना पर महमूल किया जाता है, गोया इसने इस लड़के की मां पर जिना का इल्जाम लगाया है। लिहाजा ये औरत इसको काजी के पास ले जाकर इस पर हद कजफ जारी करवा सकती है। तो जब कोई शख्स किसी अजनबिया औरत के बच्चे के बारे में कहता है कि यह उसके खावन का बच्चा नहीं है तो वहां भी वती भी शुबा का इहतमाल तो हो सकता है, लेकिन उसको भी वती भी शुबा पर महमूल नहीं किया जाता बल्कि तोहमत जिना पर ही महमूल किया जाता है कि यह शख्स जिना की तोहमत लगा रहा है। तो जब वहां पर इसको जिना पर महमूल किया जाता है तो यहां पर भी जब खावन ने अपनी औलाद की नफी की है तो इसको जिना की तोहमत पर ही महमूल किया जाएगा, क्योंकि वती भी शुबा के लिए सबूत चाहिए भाई, बात समझ में आ गई। वला युअतबरु इहतिमालु अन यकूना अलवलदु मिन गैरिही बिलवती मिन शुबहतिन, और ये इहतिमाल मुअतबर नहीं है कि ये लड़का जो है मिन गैरिही खावंद के अलावा से हो, बिलवती मिन शुबहतिन वती भी शुबा की वजह से ये इहतिमाल जो है ये मुअतबर नहीं है। कमा इदा नफा अजनबी युन नसबहु अन अबी हिल मारूफी, जैसे कोई अजनबी वो नफी कर दे नसबहु इस लड़के के नसब की, अन अबी हिल मारूफी इसके मारूफ बाप से, उसका बाप जो मारूफ है सबको पता है ये इसका बाप है, तो वहां पर भी वती भी शुबा का इहतिमाल है। लेकिन कोई अजनबी भी उस बच्चे के नसब की नफी करे तो उसको कोई भी वती भी शुबा पर महमूल नहीं करता बल्कि इसको तोहमत जिना ही समझा जाता है भाई। तो कहते हैं वहादा ली अन्नल असल फिन नसबी, और ये इस वजह से ये जो इन्होंने कहा ना कि वती भी शुबा का एहतेमाल मुअतबर नहीं, वती भी शुबा का एहतेमाल मुअतबर नहीं, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वहादा ली अन्नल असल फिन नसबी, इसलिए क्योंकि असल जो है नसब के अंदर अल फिराश सहीह, वो फिराश सहीह है, वल फासिदु मुलहकुम बिही, और फिराश फासिद इसके साथ मुलहक है। भाई देखिए, मैंने आपको बतलाया था कि ये जो बीवी होती है ये खावंद का फिराश है, फिराश फिराश का वैसे माना तो है बिछोना, लेकिन यहां फिराश इस्तिलाही लफ्ज है, फिराश का माना है किसी औरत का किसी शख्स के बच्चों को जन्म देने के लिए मुख्तस हो जाना। जब एक शख्स एक औरत से निकाह करता है तो इसका मतलब यह होता है कि यह औरत अब इसी शख्स के बच्चों को जन्म देगी, तो यह औरत उस शख्स की फिराश हो गई। क्या हो गई? फिराश हो गई। और मैंने बताया था कि फिराश तीन किस्म पर हैं, एक फिराश कवी है, एक फिराश मुतवस्सित है और एक फिराश ज़ईफ है। फिराश कवी बीवी है भाई, बीवी से जो भी औलाद पैदा हो वो खुद ब खुद खावंद की शुमार होती है, और अगर खावंद इस औलाद की अपने से नफी करना चाहता है तो उसको पैदाइश के इब्तदाई दिनों में लियान करना पड़ेगा, लियान के बगैर ये अपने से बच्चे के नसब की नफी नहीं कर सकता भाई। तो लिहाजा सबसे कवी फिराश औरत है, इसे जो भी बच्चा पैदा होगा खावंद का शुमार होगा, और अगर खावंद नफी करना चाहता है तो लियान के बगैर नफी भी नहीं कर सकता। और सबसे कमजोर फिराश जो है वो बांदी है, याद रखो बांदी से जो भी बच्चा पैदा हो वो खुद ब खुद आका का शुमार नहीं होता, बल्कि जब आका कह दे कि यह मेरी औलाद है फिर अब यह आका का बच्चा शुमार होगा, और अब यह औरत इसकी उम्मे वलद बन गई और आका के मरने के बाद ये आजाद हो जाएगी। तो ये जो बांदी है, ये जो आम बांदी है, ये सबसे ज़ईफ फिराश है, इससे जो भी बच्चा पैदा हो वो खुद ब खुद आका का शुमार ही नहीं होता जी। और हां, जब एक दफा एक बांदी ने बच्चे को जन्म दिया और आका ने कह दिया ये मेरी औलाद है तो ये उसकी उम्मे वलद बन गई, और ये जो उम्मे वलद है ये फिराश मुतवस्सित है। अब उम्मे वलद आगे जिस बच्चे को भी जन्म देगी वो खुद ब खुद इसी आका का शुमार होगा, लेकिन अगर आका नफी करना चाहता है तो बगैर लियान के ही नफी कर सकता है, कह दे ये मेरी औलाद नहीं, बस अब ये उसका बच्चा शुमार नहीं होगा भाई। तो बीवी जो है वो सबसे कभी फिराश है, तो ये बीवी जो है ये फिराश सहीह है भाई। और अगर कोई शख्स निकाह फासिद करता है, मसलन इद्दत के अंदर किसी औरत से निकाह कर लिया या बगैर गवाहों के निकाह कर लिया, तो ये निकाह फासिद है भाई, निकाह फासिद है। तो यहां चूंकि निकाह फासिद हुआ है तो फिराश फासिद है, फिराश भी क्या है, फिराश फासिद है, लेकिन फिराश फासिद को भी फिराश सही वाला हुक्म दिया गया कि फिराश फासिद से भी अगर आगे बच्चा पैदा हो गया अब वो इसी खावंद का शुमार होगा जिसने वती भी शुबा की थी, क्योंकि उसका तो ख्याल था शायद मेरा निकाह हो गया है भाई, तो इसको बच्चे को वलदु जिना शुमार नहीं किया जाता। तो फिराश फासिद को मिलाया गया है किसके साथ, फिराश सही के साथ, तो असल फिराश सही है और फिराश फासिद को फिराश सही के साथ मिलाया गया है, लेकिन उसके लिए भी सबूत चाहिए, बगैर सबूत के फिराश फासिद साबित नहीं हो सकता। तो कहते हैं वहादा, ऊपर क्या कहा था कि वती भी शुबा का एहतमाल मोतबर नहीं है भाई, अब बयान कर रहे हैं वहादा, और ये इस वजह से कि ये वती भी शुबा का एहतमाल मोतबर नहीं है, ये इस वजह से ले अनल असलफी नसबिल फिराशु सही हो, इसलिए क्योंकि असल जो है नसब के अंदर वो फिराश सही है, वल फासिदु मुल हकुम भी ही, और फिराश फासिद को इसके साथ मिलाया गया है, उसको भी यही वाला हुक्म दिया गया है। फनफ्यू अनिल फिराश सही ही, तो नसब की नफी करना फिराश सहीह से कज़फ़ुन, ये तोहमत है जिना की, हत्ता यज़हर अल मुल्हक बिही, यहां तक कि मुल्हक बिही जाहिर हो जाए, यानी फिराश फासिद होना जाहिर हो जाए। पहले फिराश फासिद होना यानी उसका कोई सबूत तो हो जिससे पता चले कि इससे भी इस औरत ने निकाह किया था भाई, तो उसके लिए सबूत चाहिए, बगैर सबूत के फिराश फासिद का सबूत नहीं हो सकता। तो कहते हैं फनफ्यू अनिल फिराश सही कज़फ़ुन, तो फिराश सही से नसब की नफी करना यह तोहमत है, हत्ता यज़हर अल मुल्हक बिही, यहां तक के फिराश मुल्हक बिही जाहिर हो जाए, जब तक उसका सबूत ना हो जाए उसको कज़फ ही शुमार किया जाएगा। वयुश्तरतु तलबुहा, मतन में यह भी आया था कि वतालबत हु बिमूजबिल कज़फी, कि औरत जो है कज़फ के हुक्म का तकाजा करती है, यह जरूरी है क्योंकि यह औरत का हक है, औरत पर जिना का इल्जाम लगाया है तो इसके लिए मुतालबा जरूर चाहिए। अगर एक शख्स ने एक औरत पर जिना का इल्जाम लगाया है और वो औरत इसको काजी के पास नहीं लेकर जा रही तो कोई और भी नहीं लेकर जा सकता भाई। तो कहते हैं वयुश्तरतु तलबुहा, और इस औरत का मुतालबा भी शर्त होगा, लिअन्नहु हक्कुहा, क्योंकि ये लियान उस औरत का हक है, फला बुद्ध मिन तलबिहा कसाइरिल हुकूकी, तो लिहाजा इस औरत का तलब करना जरूरी है कसाइरिल हुकूकी, जैसे के बाकी हुकूक में होता है उनमें भी मुतालबा जरूरी होता है। आगे देखिए फैनिम तना मिनहू हबसहुल हाकिमु हत्ता युलाइना औ युकद्दिबा नफ्सहू, सूरत मसला यह कि औरत काजी के पास ले गई अपने खावन को, अब काजी उन दोनों में लियान करवाएगा, अब खावंद लियान ही नहीं कर रहा, लियान नहीं कर रहा, लियान से रुक गया है, तो याद रखो ये उस औरत का हक है इस खावंद पर, इसको लियान करना पड़ेगा, इसने उस पर जिना का इल्जाम लगाया है, तो ये खावंद हक अदा करने पर कादिर है और फिर भी हक अदा नहीं कर रहा, यानी ये लियान कर सकता है ये फिर भी लियान नहीं कर रहा, तो काजी इसको जेल में डाल देगा, यहां तक कि या तो ये लियान कर ले या अपने झूठा होने का इकरार कर ले कि मैंने झूठ बोला था, और जब ये कह देगा मैंने झूठ बोला था तो अब इसको हद कजफ लगा दी जाएगी जी। तो यहां ये हक अदा करने पर कादिर है इसलिए इसको जेल में डालेंगे, लेकिन अगर ये हक अदा करने पर कादिर ही ना होता फिर जेल में ना डालते। जैसे मसलन एक आदमी है, उसने किसी से कर्जा लिया था और उसका सारा माल डूब गया, खत्म हो गया, अब वो कर्जखा जो है वो इससे बार बार माल का मुतालबा करते हैं, लेकिन इस बेचारे के पास माल है ही नहीं, कहां से अदा करे, वो इसको काजी के पास ले गए, काजी ने इसको बुलवाया और कहा हां भाई तुम इनका कर्ज क्यों नहीं अदा करते, उसने कहा काजी साहब मेरे पास माल ही नहीं है, अगर मेरे पास माल होता तो मैं जरूर अदा कर देता। तो इस शख्स को काजी जेल में नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास माल है ही नहीं, तवज्जो है, तो ये जो मुफलिस है ये हक अदा करने पर कादिर नहीं है, लिहाजा इसको काजी जेल में नहीं डालेगा। लेकिन अगर उसके पास माल है और वो फिर भी अदा नहीं कर रहा, फिर उसको काजी जेल में डालता है भाई, यहां तक कि वो माल अदा कर दे। तो कहते हैं फैनिम तना मिनहु हबसहुल हाकिमु, अगर खावंद इस लियान से रुक गया हबसहुल हाकिमु, तो हाकिम उसको कैद में डाल देगा। हत्ता युलाइना, यहां तक कि ये लियान कर दे, औ युकद्दिब नफ्सहु, या अपने आप को झुटला दे, तो फिर इस पर हद कजफ लग जाएगी। लिअन्नहु हक्कुन मुस्तहक्कुन अलैहि, लिअन्नहु हक्कुन, इसलिए क्योंकि ये ऐसा हक है, मुस्तहक्कुन अलैहि, जिसका इस पर इस्तेहकाक है। मुस्तहक का तर्जमा कर लें वाजिब के, क्या तर्जमा कर लें वाजिब, अब बेहतरीन तर्जमा हो जाएगा। कहते हैं लिअन्नहु हक्कुन मुस्तहक्कुन अलैहि, इसलिए क्योंकि ये ऐसा हक है जो इस पर वाजिब है। वह वकादिरुन अला ईफाईही, और खावन इसकी अदायगी पर कादिर भी है। फयुहबसु बिही, तो इसकी वजह से इसको कैद में डाला जाएगा। हत्ता यातिया बिमा हुआ अलैही, यहां तक कि खावंद ले आए उस चीज को जो इस पर है, यानी लियान कर ले। औ युकज्जिबा नफ्सहु, या अपने आप को झुटला दे। लियर्तफिअ सबबु, ताकि ये लियान का सबब उठ जाए। जब अपने आप को झुटला देगा तो लियान का सबब खत्म हो गया। भाई देखो, ये लियान खावंद और बीवी क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को झुटलाते हैं। खावंद बीवी को झुटला रहा है और बीवी खावंद को झुटला रही है, लेकिन जब खावंद ने इकरार कर लिया कि मैंने झूठ बोला था, अपने आप को झुटला दिया, जब झुटला दिया तो लियान का सबब ही खत्म हो गया। लियान का सबब तो क्या था, दोनों का एक दूसरे को झुटलाना, अब तो खावंद का झुटलाना नहीं पाया जा रहा, लिहाजा अब लियान का सबब ही खत्म हो गया। बात समझ में आ गई, और इस सूरत में फिर काजी इस पर हद कजफ लगा देगा। तो कहते हैं लियर तफिया सबबु, ताकि इस लियान का सबब उठ जाए, यानी खत्म हो जाए। वलौ लान वजबा अलैह लियानु, और जब खावन लियान कर ले तो अब उस औरत पर भी लियान वाजिब हो गया। लिमा तलौ ना मीना नस्सी, उस नस की वजह से जो हमने तिलावत की, वो जो आयत पीछे आई थी। फशहादतु अहदिहिम अरबाउ शहादातिम बिल्लाही, तो देखा मालूम है इनमें से हर एक पर ये शहादतें हैं भाई। तो कहते हैं औरत पर भी लियान वाजिब होगा। लिमा तलौ ना मिनन नस्सी, उस नस की वजह से जो हमने तिलावत की। इल्ला अन्नहु युबतदा उबिज़ौजी, मगर यह कि इब्तिदा खावंद से की जाएगी। लियान की इब्तिदा कौन करेगा, खावंद। लिअन्नहु हुवल मुद्दई, इसलिए क्योंकि वही मुद्दई है, उसी ने जिना का दावा किया था बीवी पर, तो वो मुद्दई है, तो उससे इब्तिदा करवाई जाएगी। फइनिम तनात, अगर यह औरत रुकी रही, यानी इसने लियान नहीं किया। हबसा हल हाकिमु, तो हाकिम इसको कैद में डालेगा। हत्ता तुलाइना औ तुसद्दिकहु, यहां तक कि औरत लियान कर ले, औ तुसद्दिकहु, या खावंद की तस्दीक कर दे कि खावंद सच कह रहा है, या लियान कर ले या खावंद की तस्दीक कर ले। लियान कर लेगी तो फिर काजी दोनों में जुदाई करवा देगा, और बच्चे के नसब की अगर नफी की थी तो अब बच्चे का नसब खावन से काट कर सिर्फ बीवी के साथ जोड़ देगा, अब वो सिर्फ इस औरत का बच्चा शुमार होगा, इस खावन का बच्चा शुमार नहीं होगा। और अगर औरत खावन की तस्दीक कर देती है कि ये सच कह रहा है, तो फिर याद रखो, तो फिर लियान खत्म, क्योंकि लियान का सबब क्या था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को झुटला रहे थे, अब तो औरत ने झुटलाना खत्म कर दिया, उसने तो खावन की तस्दीक कर दी है, तो लियान खत्म। और नीज औरत पर हद जिना भी नहीं आएगी, भाई क्यों, उसने तस्दीक कर दी है। कहते हैं भाई हद जिना के लिए कसदन चार मरतबा इकरार जरूरी है जी। कितनी मरतबा, क्योंकि हर इकरार एक गवाह के कायम मकाम है, और नीज ये इकरार भी कसदन जिना के इकरार के तौर पर हो जी। ये जो इकरार भी हो ये कसदन हो, और जिना के इकरार के तौर पर ही यह बात वो कहे यहां लियान के अंदर अपनी जान छुड़ाने के लिए यह तो कह रही है। तो कहते हैं फैनिम तनात हबसहल हाकिम हत्ता तुलाइना औ तुसद्दिकहु, और अगर औरत रुकी रही लियान से तो हाकिम उसको जेल में डाल देगा, हत्ता तुलाइना यहां तक कि वो लियान कर ले, औ तुसद्दिकहु या वो खावन की तस्दीक कर दे, लिअन्नहु हक्कुन मुस्तहक्कुन अलैहा, इसलिए क्योंकि ये ऐसा हक है जो इस औरत पर वाजिब है, वही अकादिरतुन अला ईफाईही, और औरत इसकी अदायगी पर कादिर है, फतुहबसु फीही, तो इसके अंदर उसको कैद किया जाएगा। वैसा कान जौजु अब्दन औ काफिरन औ महदूदन फी कज़्फिन, सूरत है मसला यह कि खावंद गुलाम है, उसने बीवी पर जिना का इल्जाम लगा दिया, तो अब लियान नहीं होगा क्योंकि खावंद गुलाम है, वह अहले शहादत ही नहीं, और लियान तो शहादतों का नाम था, लिहाजा अब खावन से गवाह तलब किए जाएंगे, जिना का इल्जाम लगाया है, चार गवाह लेकर आओ, नहीं तो हद कजफ जारी कर दी जाएगी। या इसी तरह अगर खावंद काफिर है और उसने मुसलमान बीवी पर जिना का इल्जाम लगा दिया, तो इस सूरत में भी ये तो काफिर है, ये तो अहले शहादत ही नहीं है, लिहाजा यहां पर भी इसे चार गवाह तलब किए जाएंगे जिना पर, अगर ना लाया तो हद कजफ जारी कर दी जाएगी। सवाल पैदा होता है कि खावंद काफिर हो और मुसलमान बीवी पर तोहमत लगा दे, यह कैसे हो सकता है? मुसलमान औरत का तो काफिर मर्द से निकाह ही नहीं जायज। कहते हैं उसकी सूरत यह है कि मियां बीवी दोनों काफिर थे, फिर बीवी मुसलमान हो गई और अभी काजी ने दोनों में जुदाई नहीं करवाई, उससे पहले ही खावंद ने बीवी पर जिना का इल्जाम लगा दिया। तो कहते हैं वह इदा कान ज़ौजु अब्दन औ काफिरन, और अगर खावन जो है वह गुलाम है, औ काफिरन या काफिर है, औ महदूदन फी कज़्फिन या महदूद फिल कज़्फ है, खावन पहले भी किसी पर जिना का इल्जाम लगा चुका और गवाह पेश न कर सका था, तो खावन पर हद कज़्फ जारी हुई थी, 80 कोड़े लगे थे, और हद कज़्फ में यह भी सजा है कि आइंदा जिंदगी भर अब इस आदमी की गवाही कबूल नहीं करनी, तो ये अदाए शहादत नहीं कर सकता, और लियान में तो अदाए शहादत होता है जी। तो इस शख्स ने जो महदूद फिल कज़फ है, इसने अपनी बीवी पर जिना का इल्जाम लगा दिया, अब ये लियान तो नहीं कर सकता, जब लियान नहीं कर सकता तो अब इस पर हद कज़फ लगा दी जाएगी, या चार गवाह पेश करे या हद कज़फ लगा दी जाएगी। सूरत समझ में आ गई, यह माना है औ महदूदन फी कज़्फिन, या ये खावन जो है महदूद फिल कज़फ था, फ़क़ज़फ़ इमरअतहु, तो इसने तोहमत लगाई अपनी बीवी पर, खावन गुलाम था या काफिर था या महदूद फिल कज़फ था, और इसने फ़क़ज़फ़ इमरअतहु, और इसने अपनी बीवी पर तोहमत लगाई, फ़अलैहिल हद, तो इस पर हद होगी, इन तीनों पर हद आएगी, इल्ला ये के चार गवाह पेश कर दें, लिअन्नहु तअज़्ज़र अल-लियान, इसलिए क्योंकि लियान मुतअज़्ज़िर हो गया, मुमकिन न रहा, लिमाना मिन जिहतिही, लिमानन माना का यहां तर्जमा इल्लत और सबब के करेंगे, लिमानन एक ऐसे सबब की वजह से, मिन जिहतिही जो इस खावन की जिहत से है, खावन अहले शहादत नहीं है इसलिए लियान नहीं हो सकता, तो लियान के अंदर मान्य किसकी तरफ से आया? खावन की तरफ से आया। फयुसारु इलल मुजबिल असली, तो कज़फ के मुजब असली की तरफ जाया जाएगा, और कज़फ का मुजब असली क्या है? 80 कोड़े लगते हैं, तो जब लियान नहीं हो सकता तो मुजब असली की तरफ चले जाएंगे। तो कहते हैं फयुसारु, तो रुजो किया जाएगा, इलल मुजबिल असली, कज़फ के मुक्तज़ा असली की तरफ, वह हुआ साबितु बिकौलिही ताला, और वो साबित है अल्लाह के इस कौल से, वल्लदीन यरमून अल मुहसनाती, और वो लोग जो जिना की तोहमत लगाते हैं पाक दामन औरतों पर, अल आया ऐ इकरा इल आयता, कि आयत पढ़ लीजिए, वल्लियान खलफुन अनहु, और लियान जो है वो इससे नाइब है, लियान तो वो इस मुजब असली से नाइब है, इसका बदल है वो भाई, तो वो असल जो है यानी हद कज़फ आ जाएगी भाई। वह इनकान मिन अहले शहादती, और अगर खावन जो है वो अहले शहादत में से है, वही अमतुन, अब दूसरी सूरत, बीवी जो है वो अहले शहादत नहीं, एक शख्स ने एक बांदी से निकाह किया हुआ है, अब खावन ने उस पर जिना की तोहमत लगाई, खावन तो अहले शहादत है लेकिन बीवी जो है वह तो बांदी है, और बांदी तो अहले शहादत नहीं, या बीवी जो है यहूदिया या ईसाई औरत है भाई, तो वो भी अहले शहादत नहीं है, या बीवी जो है महदूदा फिल कजफ है, बीवी क्या है महदूदा फिल कजफ, बीवी ने किसी पर जिना का इल्जाम लगाया था और फिर चार गवाह पेश ना कर सकी तो उसको हद कजफ लग चुकी है। और हद कजफ वालों के बारे में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, कि इनकी गवाही कभी कबूल ना करो, मानूम बीवी की गवाही भी कबूल नहीं की, यह अदाय शहादत नहीं कर सकती भाई। तो बीवी या बांदी है या काफिरा है या महदूदा फिल कजफ है, या बीवी पाक दामन नहीं है, खावन ने बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया और इस औरत ने पहले भी एक दफा जिना किया था और वो साबित भी हो गया था और इस पर हद जिना जारी हुई थी, सौ कोड़े इसको लगे थे भाई, तो ये औरत पाक दामना नहीं, यानी एहसानुल कज़्फ इसके अंदर नहीं है। तो इस सूरत में कहते हैं ना हद आएगी और ना लियान आएगा। लियान इसलिए नहीं आ सकता कि औरत में सलाहियत ही नहीं है लियान की, हद भी नहीं आएगी क्योंकि मान्य औरत की तरफ से आया है, वो लियान नहीं कर सकती भाई। तो कहते हैं वह इनकान अमीन अहली शहादत, और अगर खावन जो है वो तो अहले शहादत में से है, वह यह अमतुन औ काफिरतुन औ महदूतुन फी कज़्फिन, और ये बीवी जो है उसकी वो बांदी है या काफिरा है या महदूदा फिल कज़्फ है, औ कानत मिम्मन ला युहद्दु काज़िफुहा, या औरत उन औरतों में से है कि हद नहीं लगाई जाती उन पर तोहमत लगाने वालों को, भी अन कानत सबीयतन, वही सूरत के वो बच्ची है यानी नाबालिगा है, क्या है नाबालिगा। एहसानुल कज़्फ कितनी शर्तें थीं, पांच। पहली शर्त आजाद आकिल बालिग, देखा आकिल बालिग होना जरूरी है औरत का, ऐसी औरत पर जिना का इल्जाम लगाया जाए जो आजाद है आकिल है बालिग है मुसलमान है और पाकदामन है, तो ये बच्ची जो है नाबालिगा है, ये तो बालिग ही नहीं है, तो ये भी मोहसना नहीं, मोहसना नहीं। इसी तरह औ मजनूना तन, या वो औरत क्या है मजनूना है, तो उसमें अकल नहीं है, जब अकल नहीं तो वो भी मोहसना नहीं। औ जानिया तन, या वो औरत जानिया है यानी उसने जिना किया था और उसको हद जिना उस पर लग चुकी है एक दफा, तो इन तमाम सूरतों में लियान से जो मान्य आया वो किसकी तरफ से आया है, औरत की तरफ से, कि वो अहले शहादत नहीं है भाई। तो कहते हैं औकानत मिम्मन ला युहद्दु काज़िफुहा, या औरत उन औरतों में से है कि उस पर तोहमत लगाने वाले पर हद नहीं लगाई जाती, बी अन कानत सबीयतन, बई सूरत के वो बीवी जो है सबीयतन बच्ची है यानी नाबालिगा है, औ मजनूनतन या मजनूना है, औजानियतन या जानिया है, फला हद अलैहि वला लियाना, तो खावन पर हद भी नहीं आएगी और लियान भी नहीं होगा। भाई लियान क्यों नहीं आएगा, उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं लिनइदामी अहलियती शहादती, इसलिए कि इनकी ये जो औरतें ऊपर जिक्र हुई इनमें से बास के अंदर शहादत की अहलियत ही नहीं है। भाई देखिए ना, ऊपर दो किस्म की औरतें जिक्र हुई, बांदी या काफिरा या महदूदा फिल कज़्फ, ये अहले शहादत नहीं है, ये अहले शहादत नहीं है। औकानत मिम्मा ला युहद्दु काज़िफुहा, ये दूसरी किस्म की औरतें जिक्र हुई जिन पर इल्जाम लगाने वाले पर हद जारी नहीं की जाती भाई, तो ये दो किस्म की औरतें हो गई। तो कहते हैं खावन पर ना हद आएगी और ना लियान, क्यों नहीं आएगा लियान, कहते हैं लिनइदामी अहलियती शहादती, शहादत की अहलियत ना होने की वजह से, वो जो बांदी है या काफिरा है या महदूदा फिल कज़्फ है वो अहले शहादत ही नहीं, और लियान तो शहादतों का नाम है। और नीस जो दूसरी थी कि वो औरत जिस पर तोहमत लगाने वाले पर हद जारी नहीं की जाती, उसके बारे में भी लियान नहीं आएगा, क्यों, कहते हैं वह अदम एहसानी फी जानी बिहा, कि उसकी जानिब से अदम एहसान है, वो मोहसना नहीं है, तो हद भी साकित हो जाएगी, हद भी साकित हो जाएगी। तो कहते हैं लिनइदामी अहलियती शहादती वादमिल एहसानी फी जानिबिहा, इसलिए क्योंकि शहादत की अहलियत मादूम है और मोहसना होना नहीं पाया जा रहा फी जानिबिहा उस औरत की जानिब में, तो लियान नहीं होगा और हद भी नहीं आएगी। भाई हद क्यों नहीं आएगी खावन पर हद कज़्फ, कहते हैं वमतना उल्लियानी लिमाना मिन जिहतिहा, और लियान का मुमतने होना लिमानन वो एक ऐसे सबब की वजह से है, मिन जिहतिहा जो औरत की तरफ से है, लियान का मुमतने होना एक ऐसे सबब की वजह से है, मिन जिहतिहा जो उस बीवी की तरफ से है, फयस कुतुल हद, तो हद भी साकित हो जाएगी, हद भी साकित हो जाएगी। कमा इदा सद्दकत हो, ये इसी तरह है जैसे कि बीवी जब खावंद की तस्दीक कर दे, जैसे बीवी जब खावंद की तस्दीक कर दे तो उस सूरत में भी न लियान आता है और ना हद आती है। खावंद ने बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया और बीवी ने कहा तुम सच कह रहे हो, तो अब तो लियान ही नहीं, लियान में तो क्या था, दोनों एक दूसरे की तकजीब करते थे और यहां तो बीवी क्या कर रही है, खावंद की तस्दीक कर रही है, तो लिहाजा इस सूरत में लियान भी नहीं और हद भी नहीं आएगी क्योंकि बीवी खुद खावंद की तस्दीक कर रही है। भाई बीवी तो खुद खावंद की तस्दीक कर रही है, लिहाजा हद भी नहीं और लियान भी नहीं है। भाई तो लियान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि औरत ने तस्दीक कर दी, तो लियान से का माने औरत की तरफ से आया है, जब औरत की तरफ से लियान का माने है तो हद भी नहीं आएगी। भाई तो कहते हैं कमा इदा सद्दकत हु, जैसे कि औरत जो है खावंद की तस्दीक कर दे। वल असलु फी दालिका कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और दलील जो है इसके अंदर हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का कौल है, आपने फरमाया अरबातुन ला लियान बैनहुम, के चार अफराद ऐसे हैं, ला लियान बैनहुम व बैन अजवाजहिम, के उनके और उनकी अजवाज के दरमियान लियान नहीं होता। अल यहूदियतु वन नसरानियतु तहतल मुस्लिमी, वो यहूदिया और वो ईसाई औरत तहतल मुस्लिमी, जो किसी मुसलमान के तहत हो, यानी खावन मुसलमान है और बीवी यहूदी या ईसाई है। वल ममलूकतु तहतल हुर्री, और इसी तरह वो ममलूका वो बांदी, तहतल हुर्री जो आजाद आदमी के तहत हो, वल हुर्रतु तहतल ममलूकी, और इसी तरह वो आजाद औरत जो ममलूक यानी गुलाम के तहत हो, गुलाम की बीवी हो, तो इन सब में लियान नहीं आता। भाई यह हदीस है भाई। वलौकाना महदूदैन फी कज़्फिन, और अगर ये दोनों महदूद फी कज़्फ हुए, फअलैहिल हद, तो खावंद पर हद आएगी। अगर ये दोनों महदूद फिल कज़्फ हैं, खावंद ने भी किसी पर जिना का इल्जाम लगाया था, उस पर भी हद कज़्फ जारी हो चुकी, लिहाजा वो अदाए शहादत नहीं कर सकता, और बीवी ने भी किसी पर किसी जमाने में जिना का इल्जाम लगाया था, उस पर भी हद कज़फ जारी हो चुकी है, तो दोनों महदूद फिल कज़फ हैं और दोनों अदाए शहादत नहीं कर सकते। अब इस हाल में खावंद ने बीवी पर जिना का इल्जाम लगा दिया, जब बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया तो अब खावंद पर हद कज़फ जारी होगी, अब खावंद पर हद कज़फ जारी होगी। भाई कैसे हद कज़फ खावंद पर जारी होगी, यहां अगर खावंद की तरफ से मान्या है लियान का तो बीवी की तरफ से भी तो मान्या मौजूद है। कहते हैं भाई खावंद की तरफ से मान्या ना हो फिर बीवी को देखा जाएगा, खावंद की तरफ से मान्या ना हो फिर उसके बाद बीवी की तरफ देखा जाएगा कि उधर मान्या है या नहीं, लेकिन यहां तो खावंद की तरफ से ही मान्या आ गया, जब खावंद की तरफ से मान्या आ गया और इसने जिना का इल्जाम लगाया है तो अब बीवी की तरफ से जो मान्या आया है उसका कोई एतबार नहीं किया जाएगा, क्योंकि मान्या खावंद की तरफ से ही मौजूद है, तो लिहाजा खावंद पर हद कज़फ जारी कर दी जाएगी, इल्ला ये कि वो चार गवाह पेश कर दे। भाई तो कहते हैं वलौ काना महदूदैन फी कज़्फिन, और अगर ये दोनों महदूद फिल कज़्फ हुए, फअलैहिल हद, तो खावंद पर हद वाजिब होगी। वसिफतुल लियानी, और लियान की सिफत यह है यानी उसका तरीका यह है, अन यब्तदी अल काजी बिज़ौजी, के काजी जो है खावंद से इब्तिदा करेगा, फयशहदु अरबअन मर्रातिन, तो खावंद गवाही देगा चार मरतबा, यकूलु फी कुल्लि मर्रतिन, हर मरतबा में वो कहेगा अशहदु बिल्लाहि इन्नी लमिनस सादिकीन फी मा रमैतुहा बिही मिनज़ ज़िना, अशहदु मैं गवाही देता हूं, बिल्लाहि के अल्लाह की कसम, इन्नी लमिनस सादिकीन के बेशक मैं सच्चों में से हूं, फीमा रमैतुहा बिही मिनज़ ज़िना, उस इल्जाम के अंदर जो मैंने इस औरत पर जीना का लगाया है, मैं गवाही देता हूं वल्लाह मैंने इस औरत पर जो जीना का इल्जाम लगाया है मैं उसमें सच्चा हूं। भाई तर्जमा समझ में आ गया, अशहदु मैं गवाही देता हूं, बिल्लाही इन्नी लमिना सादिकीना कि बेशक मैं सच्चों में से हूं, फीमा रमैतुहा बिही मिनज़ ज़िना, उस इल्जाम के अंदर जो मैंने इस औरत पर जीना का लगाया है, रमयुन का माना फेंकना यानी जीना का इल्जाम लगाना यहां मुराद है। वह यकूल उफिल खामिसती, और पांचवीं मरतबा में खावंद कहेगा लानतुल्लाहि अलैहि इनकान मिनल काज़िबीन फी मा रमाहा बिही मिनज़ ज़िना, कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से है, फी मा रमाहा बिही उस इल्जाम के अंदर जो इसने इस औरत पर लगाया है, मिनज़ ज़िना यानी ज़िना का, बात समझ में आ गई, यानी यूं कहेगा कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर उसने इस औरत पर जो जिना का इल्जाम लगाया है उसमें यह झूठ बोल रहा है भाई। युशीरु इलैहा फी जमीई ज़ालिका, खावन जो है उस औरत की तरफ इशारा करेगा इन सब में। देखो यहां गायब की जमीरें हैं, फीमा रमई तो हा, गायब की जमीरें हैं, लेकिन यहां खावन हाथ से भी इशारा करेगा क्योंकि जमीरों के अंदर वो तावील कर सकता है। जमीर किसी गायब की तरफ लौटानी है, खावन जो है इस औरत के बजाय किसी और औरत की नीयत कर लेता है, उसकी तरफ जमीर लौटा रहा है, तो लिहाजा खावन पर जरूरी है कि वो हाथ से भी इशारा करे। तो जब जमीर भी आ गई और हाथ से इशारा भी हो गया, अब कोई तावील नहीं हो सकती, मालूम हो वो इसी औरत की बात कर रहा है। तो कहते हैं युशीरु इलैहा फी जमीई ज़ालिका, खावन जो है इस बीवी की तरफ इशारा करेगा इन तमाम शहादतों में। सुम्म तशहदुल मरअतु अरबअ मर्रातिन, फिर वो औरत गवाही देगी चार मरतबा। तकूलु फी कुल्लि मर्रतिन, हर मरतबा में वो कहेगी अशहदु के मैं गवाही देती हूं, बिल्लाही के अल्लाह की कसम, इन्नहु लमिनल काज़िबीना कि ये शख्स झूठों में से है, फीमा रमानी बिही मिनज़ ज़िना उस इल्जाम के अंदर जो इसने मुझ पर जिना का लगाया है। बात समझ में आ गई, तो यूं कहेगी औरत कि मैं गवाही देती हूं कि वल्लाह इस शख्स ने मुझ पर जो जिना का इल्जाम लगाया है उसमें यह झूठा है। व तकूल फिल खामिसती, और पांचवीं मरतबा में औरत कहेगी गजबुल्लाह अलैहा इनकान मिनस सादिकीन फी मारमानी बिही मिनस जिना कि इस औरत पर अल्लाह का गजब हो अगर यह शख्स सच्चा है उस इल्जाम के अंदर जो उसने इस औरत पर जिना का लगाया है। वल असलुफी ही मा तलाउनाहु मिनन नस्सी, वल असलुफी ही, और दलील इसके अंदर जो है मा तलाउनाहु मिनन नस्सी, वो जो हमने तिलावत की नस में से, वो जो फशहादतु अहदिहिम अरबाउ शहादातिम बिल्लाही, इसी आयत में आगे अल्लाह ताला पूरी तफसील जिक्र फरमाते हैं भाई। वरवल हसन अन अबी हनीफत रहमहुल्ला, और हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्ला जो इमाम साहिब के शागिर्द हैं, वो इमाम साहिब से रिवायत करते हैं कि अन्नहु यअति बिलफ़्ज़तिल मुआजहती कि ये खावन जो है लेकर आएगा बिलफ़्ज़तिल मुआजहती, मुआजहत वाले अल्फाज यानी खिताब वाले अल्फाज लाएगा। यहां तो गायब की जमीरें हैं, फीमा रमई तुहा, बल्कि वो फरमाते हैं मुखातब के सीगे लाएगा, फी मा रमई तो की वो जो मैंने तुझ पर इल्जाम लगाया है। तो हसन इब्ने ज़ियाद इमाम साहब से रिवायत करते हैं कि अन्नहु यअति बिलफ़्ज़तिल मुआजहती कि खावन जो है मुआजहत वाले लफ्ज लाएगा यानी खिताब वाले अल्फाज जिक्र करेगा, यकूलू और कहेगा फी मा रमई तो की बिही मीना जीना वो जो मैंने तुझ पर जीना का इल्जाम लगाया है, लिअन्नहु अक्तअ लिल इहतिमाल इसलिए क्योंकि इहतिमाल को ज्यादा काटने वाला है। गायब की जमीर में तो एहतमाल है खावन किसी और की नीयत कर ले, लेकिन जब मुखातब की जमीर लेकर आएगा तो वहां तो और कोई एहतमाल नहीं होगा भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु अक्तअ लिल इहतिमाल इसलिए क्योंकि ये मुखातब की जमीर है, ये एहतमाल को ज्यादा खत्म करने वाली है। वजहुमा ज़करा फिल किताबी, और वजह उसकी जिसको साहिब कुदूरी ने किताब में जिक्र फरमाया, उन्होंने तो गायब के सिगे जिक्र फरमाए तो उसकी क्या वजह, अबू भी बयान फरमा रहे हैं कि उसकी वजह यह है कि अन्न लफ्जतल मुगायबती इज़न ज़म्मत इलैहल इशारतु कि अन्न लफ्जतल मुगायबती कि गायब का जो लफ्ज है यानी गायब की जो जमीर है, इज़ा जब इन ज़म्मत इलैहल इशारतु जब इसके साथ इशारा मिल गया, इन कताल इहतिमाल तो अब भी इहतिमाल खत्म हो गया, अब भी किसी और का इहतमाल यहां नहीं क्योंकि जमीर के साथ इशारा भी आ गया। قال وإذل تعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما भाई अब दोनों ने लियान कर लिया तो क्या लियान करना ही काफी है, इसी से जुदाई आ जाएगी या काजी दोनों के अंदर बाकायदा जुदाई करवाएगा? तो आपको बतलाएंगे कि नहीं, लियान से जुदाई नहीं आएगी बल्कि बाकायदा काजी जुदाई करवाएगा कि मैंने तुम दोनों में जुदाई करवा दी। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इजल ताना जब दोनों ने लियान कर लिया ला तकाउल फुरकतु हत्ता युफर रिकल काजी बैनहुमा तो जुदाई वाकई नहीं होगी यहां तक कि काजी उनके दरमियान जुदाई करवा दे। वकाल जुफर रहमहुल्ला और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं तकाउ बितलाउनिहिमा कि इन दोनों के बाहम लियान करने से ही जुदाई वाकई हो जाएगी, काजी की जुदाई की कोई जरूरत नहीं। لِأَنَّهُ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ بِالْحَدِيثِ क्योंकि हदीस की वजह से हुरमत मुअब्बदा साबित हो जाएगी। यह हदीस आ रही है भाई दो तीन सत्रों के बाद कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्मुतलाइनानी ला यजतमियानी अबदा, अल्मुतलाइनानी ला यजतमियानी अबदा, लियान करने वाले कभी भी जमा नहीं हो सकते, यानी अब दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते मियां बीवी बनकर भाई। तो इमाम जुफर फरमाते हैं देखा इस हदीस से पता चल गया वो इकट्ठे नहीं रह सकते तो मालूम हुआ उनमें जुदाई आ गई है, तो मालूम हुआ लियान से ही उनके अंदर जुदाई आ जाएगी भाई। तो कहते हैं वकाल जुफर रहमहुल्लाह तकाउ बितलाउनिहिमा की जुदाई इनके लियान से ही वाकई हो जाएगी। लिअन्नहु तस्बुतुल हुरमतुल मुअब्बदतु बिल हदीस इसलिए क्योंकि हुरमत मुअब्बदा साबित हो जाती है हदीस की वजह से। वलाना हमारी दलील, हमारे नजदीक काजी जुदाई करवाएगा तो हमारी वलाना हमारी दलील यह है कि नसबूत अल हुरमति बिफौतिल इमसा की बिल मारूफी कि हुरमत का सबूत जो है वो इमसाक बिल मारूफ के फौत हो जाने की वजह से है। फयल जमुह तसरीह बिल एहसान तो अब उस खामन पर लाजिम है तसरीह बिल एहसान। भाई देखो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अत्तलाक मर्रतानी के रजई तलाकें दो मरतबा हैं फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिएहसान, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से बीवी को रोकना है और तसरीहुम बिएहसान या एहसान के साथ उसको रुख्सत करना है। तो यह सिर्फ तलाक के साथ यह हुक्म नहीं है, यह वैसे ही खावन के लिए यही हुक्म है। अल्लाह ने उस खावन को इख्तियार दिया है दो चीजों में से एक का, या तो वह बीवी को अच्छे तरीके से जाब्ते के मुताबिक रोक कर रखे जैसे माशरे में बीवी को रखा जाता है, तो यह है इमसाक बिल मारूफ अच्छे तरीके से रोकना, यूं को जाबते और कानून के मुताबिक बीवी को रोकना जो मारूफ जाबता है लोगों के दरमियान। तो खावंद को शरीयत ने इख्तियार दिया है दो चीजों में से एक को इख्तियार कर ले, अगर बीवी को रखना चाहता है तो इमसाक बिल मारूफ पर अमल करे, मारूफ तरीके से बीवी को रखे, अच्छे तरीके से बीवी को रखे, और तसरीह बिल एहसान या तसरीह बिल एहसान पर अमल करे, अगर नहीं रखना चाहता तो उसको अच्छे तरीके से रुख्सत कर दे, एहसान के साथ उसको रुख्सत कर दे। तो यह सिर्फ तलाक के साथ खास नहीं है बल्कि यह हुक्म आम है, खावंद को शरीयत ने दो चीजों का इख्तियार दिया है, बीवी को रखना है तो अच्छे तरीके से रोक कर रखे मारूफ तरीके से जैसे माशरे में रखा जाता है, तो उस तरह जाब्ते और कायदे के मुआफिक अच्छे तरीके से बीवी को रखे, और अगर अच्छे तरीके से बीवी को नहीं रखना चाहता फतसरीहुम बिएहसान तो उसको एहसान के साथ नेकी के साथ रुख्सत कर दे। बाज लोग बीवी को रखते भी नहीं और उसको तलाक भी नहीं देते, उसको मुअल्लक करके रखते हैं भाई, इस खावन ने भी उसको बीवी की तरह नहीं रखा हुआ और वो तलाक भी नहीं दे रहा कि वो आगे कहीं और निकाह कर ले, तो इससे अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं। तो लिहाजा खावंद को दो चीजों में से एक का इख्तियार है, या तो वह इमसाक बिल मारूफ पर अमल करे, अगर उस पर अमल ना कर सके तो फिर दूसरी सूरत यही है कि उसको तसरीह बिल एहसान पर अमल करना पड़ेगा और बीवी को एहसान के साथ रुख्सत करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी देखो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं वलाना अन्न सबूत अल हुरमति बिफौतिल इमसाक बिल मारूफी कि यहां जो हुरमत का सबूत आया है वह इमसाक बिल मारूफ फौत कर देने की वजह से आया है। खावन को तो शरीयत ने क्या हुक्म दिया है कि बीवी को अच्छे तरीके से रोक कर रखो, तो ये खावन जो इस पर जिना का इल्जाम लगा रहा है और उसके साथ लियान कर रहा है तो इसने इमसाक बिल मारूफ पर अमल नहीं किया, जब अच्छे तरीके से बीवी को नहीं रोका तो हुरमत आ गई, लेकिन फिर भी खावन पर लाजिम है कि वह क्या करेगा तसरीह बिल एहसान पर अब उसको अमल करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं अन्न सबूत अल हुरमति बिफौत अल इमसाक बिल मारूफी, कि हुरमत का सबूत जो है इमसाक बिल मारूफ के फौत हो जाने से हो जाता है। फयल जमुह तसरीह बिल एहसानी, तो खावन पर अब लाजिम हो गया तसरीह बिल एहसान। फईदम तना, जब खावन इससे बाज रहा, वो रुका रहा, उसने तसरीह बिल एहसान नहीं किया, ना बल काजी मना बहू, तो काजी उसका कायम मकाम हो जाएगा और तसरीह बिल एहसान कर देगा। दफअन लि जुल्मी, जुल्म को दूर करने के लिए, औरत पर से जुल्म को दूर करने के लिए। दल्ला अलैहि कौलु ज़ालिकल मुलाइनी इंदन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, दलालत करता है इस पर लियान करने वाले का कौल इंदन नबी अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के पास। भाई ये एक सहाबी वही हजरत उवैमिर अजलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये हजरत उवैमिर अजलानी रजी अल्लाह तआला अन्हो, इन्होंने बीवी को जिना करते हुए देखा तो फिर आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, कोई शख्स अगर अपनी बीवी के साथ किसी और आदमी को देखे तो अगर ये उसको कत्ल करता है तो आप लोग उसको कत्ल कर देंगे यानी किसास में, तो फिर वो क्या करे? कोई शख्स अपनी बीवी को जिना करते हुए देखे तो उस आदमी को अगर वो कत्ल कर दे तो फिर आप लोग उसको कत्ल कर देंगे, तो फिर वो खावंद क्या करे? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि भाई तुम्हारे मामले में अल्लाह हुक्म नाजिल फरमा चुके हैं, जाओ अपनी बीवी को बुलाकर लाओ। चुनाचे वो गए और अपनी बीवी को ले आए और फिर वहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों में लियान करवाया, और लियान करवाने के बाद हजरत उवैमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कज़बतु अलैहा या रसूल अल्लाह इन अमसकतुहा, कि मैंने इस पर झूठ बोला है अगर मैं इसको रोक लूं, यानी या रसूल अल्लाह अब अगर मैं इसको रोक कर और अपनी बीवी बनाकर रखूं तो लोग यही समझेंगे कि इसने तो झूठ बोला है। तो चुनांचे लियान के बाद उन्होंने ये जुमला फरमाया कज़बतु अलैहा या रसूल अल्लाह इन अमसकतुहा, मैंने इस पर झूठ बोला है या रसूल अल्लाह अगर मैं इसको रोक लूं, यानी अब भी अगर इसको अपनी बीवी बनाकर रखूं। और फिर फौरन ही आगे फरमाया कि हिया तालिकुन सलासन, इसको तीन तलाकें हैं, तो फौरन ही उसको तीन तलाकें दे दी और ये लियान के बाद तलाकें दी। तो देखो यहां पर अगर लियान से ही जुदाई आ चुकी होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम इनको रद्द फरमाते कि तुमने पहले ही जुदाई आ चुकी है, तीन तलाकें देने का कोई फायदा नहीं, लेकिन हुजूर ने कोई मना नहीं फरमाया। भाई इससे मालूम हुआ कि लियान से जुदाई नहीं आती, काजी को जुदाई करवाना पड़ेगी। भाई तो कहते हैं दल्ला अलैहि कौलु ज़ालिकल मुलाइनी इंदन नबी अलैहि सलातु वसलाम, कहते हैं इस पर वो लियान करने वाले का कौल दलालत करता है जो हुजूर अलैहि सलाम के पास उन्होंने कहा। आगे देखिए भाई कज़बतु अलैहा या रसूल अल्लाह फकाल लहु अमसिकहा फकाल इन अमसकतुहा फहिया तालिकुन सलासन कालहु बादल लियान। भाई देखो यहां हदीस के अल्फाज में बड़ी तकदीम और ताखीर है, उस तरह तर्जमा ठीक नहीं बन रहा, तो यह मालूम नहीं किसी लिखने वाले से गलती हुई है या क्या हुआ है। हदीस के अंदर जो जिक्र अल्फाज आते हैं वो ये जो शुरू में आया ना कज़बतु अलैहा या रसूल अल्लाह और आगे आ रहा है इन अमसकतुहा, ये शर्त है, इसको उसके साथ जोड़ें कज़बतु अलैहा या रसूल अल्लाह इन अमसकतुहा, कि मैंने तो इस पर झूठ बोला है या रसूल अल्लाह अगर मैं इसको रोक लूं। तवज्जो है, और फहिया तालिकुन सलासन ये अलग है, ये फिर उन्होंने अलग तलाक दे दी, लेकिन बज़ाहिर किताब को देखें तो यूं लगता है कि उन्होंने कज़बतु अलैहा या रसूल अल्लाह, मैंने इसको पर झूठ बोला है, ये तो गोया इकरार कर रहे हैं कि मैंने झूठा इल्जाम लगाया था बज़ाहिर, क्योंकि आगे आ रहा है फकाल लहू अम सिखा, हुजूर ने हमसे कहा कि इसको रोक लो जी। तो यहां हिदाया की इबारत दुरुस्त नहीं है भाई, यहां पर हिदाया के अंदर है कज़बतु अलैहा या रसूल अल्लाह फकाल लहू अम सिखा, हुजूर ने फरमाया अमसी कहा इसको रोक लो, इसको रोक लो, लेकिन यह इबारत दुरुस्त नहीं भाई। हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे रोकने का हुक्म दे सकते हैं, हालांकि अभी मैंने हदीस बतलाई, हदीस में क्या आता है अल मुतलाइनानी ला यजतमियानी अबदा, कि लियान करने वाले कभी भी जमा नहीं हो सकते, यानी कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, उन दोनों में मालूम हुआ हुरमत मुअब्बदा आ चुकी है भाई। जब हुजूर अलैहिस्सलाम एक जगह फरमा रहे हैं हुर्मत मुअब्बदा आ चुकी है, तो दूसरी जगह हुजूर अलैहिस्सलाम ये कैसे फरमा सकते हैं अम सिखा कि इसको रोक लो, लियान के बाद फरमा रहे हैं इसको रोक लो। मालूम हुआ ये किताबत की गलती है भाई। ये फकाल लहू अम सिखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि इसको रोक लो, ये दुरुस्त नहीं है भाई। ये हदीस में भी ये अल्फाज जिक्र नहीं है। इस लफ्ज को निकाल दें तो फिर बाकी इबारत सही बन जाएगी। कजब तो अलैहा या रसूल अल्लाह इन अम सख्तुहा, मैंने इस पर झूठ बोला है या रसूल अल्लाह अगर मैं इसको रोक लूं। लियान के बाद यह फरमाया और फिर फही तालिकुन सलासन फरमाया भाई। बात समझ में आ गई। कालहू बाद लियानी, और ये उन्होंने लियान के बाद फरमाया था, ये जो तीन तलाकें दी ये लियान के बाद दी थी भाई। ये मालूम हुआ सिर्फ लियान से जुदाई नहीं आती बल्कि काजी को जुदाई करवाना पड़ती है भाई। दलील समझ में आ गई। आगे देखिए, व तकून उल्फुरकतु तत्लीकतन बाइनतन इंद अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, और तरफेन रहिमहुमल्लाह के नजदीक ये जो जुदाई है ये तलाक बाइन होगी। لأن فعل القاضي انتسب إليه, इसलिए क्योंकि काजी का फेल इस खावन की तरफ मनसूब होगा। काजी का फेल खावन की तरफ मनसूब होगा कि काजी ने खावन का नाइब होकर जुदाई करवाई है। तो कहते हैं لأن فعل القاضي انتسب إليه, इसलिए क्योंकि काजी का फेल जो है वो खावन की तरफ मनसूब होगा। कमा في العنين, जैसे कि नामर्द के अंदर होता है, नामर्द जो है उसको भी काजी एक साल की मोहलत देता है, अगर वो सोहबत पर कादिर ना हो सका तो फिर काजी जुदाई करता है। तो ये काजी उसका नायब बनकर जुदाई करता है, लिहाजा वो जुदाई भी किसके हुक्म में होती है, तलाके बाइन के हुक्म में। तो यहां भी काजी ने जुदाई करवाई है खावन की तरफ से, तो ये भी तलाके बाइन के हुक्म में है। आगे देखिए, वह हुआ खातिबुन ईदा अकदब नफ्सहू, खातिब भाई, खातिब बैतवा के साथ है, खताबा यख्तुबू खुतबतन व खितबतन। अगर खताबा यख्तुबू का मस्दर खुतबा लाएं तो इसका माना है तकरीर करना, खताबा यख्तुबू खुतबतन, और अगर खा के नीचे कसरा पढ़ें खताबा यख्तुबू खितबतन तो इसका माना होता है पैगाम निकाह भेजना। तो यहां ये पैगाम निकाह भेजने के माना में है। कहते हैं वह हुआ खातिबुन ईदा अकदबा नफ्सहू, अच्छा भाई ये जुदाई तलाके बाइन के हुक्म में है तरफेन रहमहुमल्ला के नजदीक, जबकि आगे आपको बतलाएंगे इमाम अबू यूसुफ रहमहुमल्ला फरमाते हैं ये तहरीम मुअब्बद है, हमेशा के लिए ये खावंद और बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए भाई, लेकिन तरफेन फरमाते हैं ये तलाके बाइन है। हां अब ये दोनों निकाह नहीं कर सकते, ये खावंद और बीवी जुदाई आ गई है, लेकिन अगर खावंद अपने आप को झुटला दे, खावंद अपने आप को झुटला दे के मैंने झूठ बोला था, तो इस सूरत में खावंद पर हद कजफ लगेगी और वो अब लियान खत्म हो गया दोनों के बीच, अब दोनों मुतलाइनान न रहे। हदीस में तो क्या आया था, अल मुतलाइनानी ला यजतमियानी अबदा, मुतलाइनान कभी भी जमा नहीं हो सकते, लेकिन जब खावंद ने अपने आप को झुटला दिया तो अब वो मुतलाइन रहा ही नहीं। मुतलाइन जो होता है वो तो दूसरे को झुटला रहा होता है, तवज्जो है। तो लिहाजा यहां खावन ने गोया अपनी उन शहादतों से रुजू कर लिया, और जब शहादतों से रुजू कर लिया तो उनका कोई हुक्म नहीं है, वो कल आदम हो गई। जब कल आदम हो गई तो अब खावन मुतलाइन न रहा, ये बीवी भी अब मुतलाइन न रही। तो जब दोनों मुतलाइन न रहे तो अब निकाह कर सकते हैं। तो कहते हैं वह हुआ खातिबुन, और खावन जो है उसको पैगाम निकाह भेज सकता है। ईदा अकदबा नफ्सहू, जब वो अपने आप को झुटला दे। इंदहुमा तरफेन के नजदीक, वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाहु हुवा तहरीम मुअब्बदुन, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये तहरीम मुअब्बद है, ये जो लियान है ये इससे जो जुदाई आएगी ये तहरीम मुअब्बद है, हमेशा की जुदाई है। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस कौल की वजह से कि आपने फरमाया अल मुतलाइनान ला यजतमियान अबदा, कि मुतलाइनान कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। नस अलत ताबीद, इसके अंदर हुजूर अलैहि सलाम ने तसरीह की है ताबीद पर, इस तहरीम के हमेशा होने पर तसरीह की है। व लहुमा, तरफेन की दलील यह है कि अन्नल इकदा बरुजू उन, कि अपने आप को झुटलाना ये रुजू है। वह शहादत बाद रुजू इला हुक्म लहा, और शहादत जो है रुजू के बाद उसका कोई हुक्म नहीं होता। वो जो लियान में शहादतें दी थी वो उनका कोई हुक्म अब नहीं, वो खत्म हो गई, इसने रुजू कर लिया। वला यजतमियान मादामा मुतलाइनैन, और ये खावंद और बीवी जमा नहीं हो सकते जब तक ये मुतलाइनैन हैं। वलम यबका तलाउन वला हुक्मुहु बादल इकजाबी, लेकिन तलाउन और उसका हुक्म तो बाकी न रहा बादल इकजाबी, अपने आप को झुटलाने के बाद अब तो ये मुतलाइन नहीं है। फयजतम यहानी, तो ये जमा हो सकते हैं, अब निकाह कर सकते हैं। वलव कान अलकसु बि नफिल वलदी, और अगर कजफ जो है बच्चे की नफी के जरिए था, खावंद ने सराहतन बीवी पर जिना का इल्जाम नहीं लगाया बल्कि सिर्फ बच्चे के नसब की नफी की, तो अब उसका भी बतलाने लगे कि उस सूरत में याद रखो अब बच्चे के नसब की नफी को भी जिक्र किया जाएगा लियान में। खावंद क्यों कहेगा कि मैं गवाही देता हूं कि वल्लाह इस औरत के बच्चे के नसब की नफी की है मैंने अपने आप से, मैं उसमें सच्चा हूं भाई। तो देखा बच्चे के नसब को वहां जिक्र करेगा। तो कहते हैं वलव कान अलकसु बि नफिल वलदी, और अगर कजफ जो था तोहमत जो थी बच्चे की नफी के जरिए थी, नफल काजी नसबहू व अलहकहू बि उम्मीही, तो काजी उस बच्चे के नसब की नफी कर देगा बाप से, व अलहकहू बि उम्मीही, और उस बच्चे को उसकी मां के साथ मिला देगा। अब ये सिर्फ उस औरत का बच्चा शुमार होगा। वह सूरतुल लियानी, और लियान की सूरत यह है कि अय्यामुर अल-हाकिमुर रजुला, कि हाकिम हुक्म देगा उस आदमी को, फयकूला, तो वो शख्स कहेगा अशहदु, मैं गवाही देता हूं, बिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह की कसम खाकर, कि इन्नी लमिना सादिकीना, कि बेशक मैं सच्चों में से हूं, ये यूं कहें बेशक मैं सच्चा हूं, फीमा रमई तु की बिही, उस इल्जाम के अंदर जो मैंने तुझ पर लगाया है, मिन नफिल वलदी, यानी बच्चे की नफी का, मैं उस इल्जाम में सच्चा हूं भाई। वह कदा फी जानिबिल मरअती, और इसी तरह औरत की जानिब में भी होगा, वो भी बच्चे के नसब को जिक्र करेगी। वलव कजफहा बिज़िना व नफ़यल वलदी, और अगर खावन ने बीवी पर जिना की तोहमत भी लगाई और बच्चे की भी नफी की, औलाद की भी नफी की। भाई देखो ये सूरत ऊपर वाली सूरत से मुख्तलिफ है। याद रखो ये जो खावन जिना का इल्जाम लगाता है ये दो किस्म का हो सकता है। एक ये कि खावन सराहतन जिना का इल्जाम लगाए, बीवी से कहे तूने जिना किया है, और एक जिना का इल्जाम जो है वो किनायतन भी हो सकता है या जिमनन भी हो सकता है। मसलन खावन ने बच्चे के नसब की नफी कर दी, बीवी ने बच्चे को जन्म दिया और खावन कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है, अब वो सराहतन तो जिना का इल्जाम नहीं लगा रहा, उसने तो जिना को जिक्र भी नहीं किया, लेकिन जिमनन ये भी जिना ही का इल्जाम है भाई। तो मालूम है जिना का इल्जाम सराहतन भी हो सकता है और बच्चे के नसब की नफी करके जिमनन भी जिना का इल्जाम हो सकता है। तो इन दोनों सूरतों में लियान किया जाएगा भाई, क्योंकि बच्चे के नसब की नफी भी दरअसल क्या है, यह जिना ही का इल्जाम है। और अगर खावन ने दोनों चीजें जिक्र की, बच्चे के नसब की नफी भी की है और साथ जिना को भी जिक्र किया है, बीवी से कहता है तूने जिना किया है, ये बच्चा मेरा नहीं है, तो अब तो दोनों बातें आ गई, जिना का इल्जाम भी सराहतन आ गया और बच्चे के नसब की नफी भी कर दी। तो यहां ये सूरत जिक्र हो रही है, वलव कजफहा बिज़िना व नफ़यिल वलदी, और अगर खावन ने जिना की तोहमत भी लगाई है व नफ़यिल वलदी और बच्चे के नसब की नफी भी की है, तो फिर ذکر فی اللعان الامرین, तो फिर लियान के अंदर भी दोनों अमर जिक्र करेगा, दोनों चीजें जिक्र करेगा। खावन यूं कहेगा कि मैं गवाही देता हूं वल्लाह मैंने इस औरत पर जो जीना का इल्जाम लगाया है और जो मैंने बच्चे के नसब की अपने आप से नफी की है, मैं उसमें सच्चा हूं भाई। और औरत भी जवाब के अंदर ये दोनों चीजें जिक्र करेगी कि मैं गवाही देती हूं वल्लाह इस शख्स ने मुझ पर जो जीना का इल्जाम लगाया है और बच्चे के नसब की जो इसने अपने आप से नफी की है, इन दोनों चीजों के अंदर यह झूठा है भाई। तो लिहाजा ये वलव कजफहा बिज़िना व नफ़यिल वलदी, इसका यह मतलब है कि दोनों चीजें खावन जिक्र कर देता है, जिना का इल्जाम भी लगाया है और साथ ही बच्चे के नसब की नफी भी की है, तो फिर दोनों जिक्र करने पड़ेंगे। तो कहते हैं वलव कजफहा बिज़िना, और अगर खावन ने औरत पर जिना की तोहमत भी लगाई, व नफल वलदा, और वलद की नफी भी की, ज़करा फिल लियान अल अमरैनी, तो जिक्र करेगा लियान में दोनों चीजें, ثم ينفي القاضي نسب الولد، پھر نفی کر دے گا قاضی بچے کے نسب کی اس باپ سے، ویلحقہ بامہ، اور اس کو ملا دے گا اس کی ماں کے ساتھ، لما رویا، اس حدیث کی وجہ سے جو روایت کی گئی ہے کہ ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع ولد امرأت ہلال ابن امیہ عن ہلال رضی اللہ تعالی عنہ. بھائی حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی یہ انہوں نے یہ رات کو اپنے گھر آئے تو انہوں نے بیوی کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا، بھائی تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور کانوں سے سنا بھی، تو اگلے دن حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور یہ بات ذکر فرمائی کہ اس طرح میں گھر والوں کے پاس آیا اور میں نے ایک شخص کو گھر والوں کے پاس دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور سنا بھی، تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے. وجہ یہ کہ اس وقت تک صرف پہلا حکم نازل ہوا تھا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو اب بظاہر حضرت ہلال ابن امیہ پر بھی حد قذف آ رہی تھی بھئی، انہوں نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا تھا، اور پھر حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ اے ہلال مبارک ہو، اللہ نے تمہاری نجات کا راستہ نکال دیا. تو وہ فرمانے لگے مجھے یقین تھا میرا رب مجھے بچا لے گا. تو اس وقت پھر یہ لعان کا حکم نازل ہوا، حضور علیہ السلام نے ان کی بیوی کو بلوایا اور پھر دونوں میں لعان کروایا. حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار شہادتیں ذکر کیں اور پانچواں جملہ کہنے لگے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے ڈرو، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اور یہ جملہ جو اب تم کہنے جا رہے ہو اس کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق بن جاؤ گے. تو لیکن حضرت ہلال فرمانے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ. انہوں نے وہ جملہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اور پھر اس کے بعد ان کی بیوی نے چار شہادتیں دیں، اور پھر پانچویں بات جب وہ کرنے لگیں تو حضور علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ جو جملہ یہ بات جو تم کرنے جا رہی ہو اس سے تم پر عذاب واجب ہو جائے گا. تو وہ ایک لمحے کے لیے رکیں وہ عورت بھائی، لیکن پھر کہنے لگیں کہ میں کبھی اپنے قبیلے کو رسوان نہیں کروں گی، اور پھر انہوں نے وہ جملہ بھی کہہ دیا. تو پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان دونوں میں جدائی کروا دی اور بچے کا نسب کاٹ کر صرف بیوی کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر باقاعدہ حضور نے نشانیاں ذکر فرمائیں کہ اگر اس عورت نے ایسے ایسے بچے کو جنم دیا تو وہ ہلال کا ہوگا، اور اگر اس نے اس طرح کے بچے کو جنم دیا تو وہ اس آدمی کا ہوگا جس کے بارے میں وہ زنا کا الزام تھا. چنانچہ بعد میں اس عورت نے جو بچے کو جنم دیا تو وہ اس آدمی کے ساتھ ملتا تھا جن کے بارے میں حضرت ہلال نے الزام لگایا تھا. تو حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے اور اس طرح کا ہے جو آپ نے ذکر فرمایا تھا. تو حضور بڑے غضب کی حالت میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ اگر یہ قسمیں نہ ہوتی، یہ قسمیں نہ ہوتی یعنی یہ شریعت کا حکم نہ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے اس کو. تو یہ واقعہ ہے حضرت ہلال ابن امیہ کی بیوی کا جو بچہ تھا اس کا نسب حضور نے حضرت ہلال سے کاٹ کر صرف ان کی بیوی کے ساتھ جوڑ دیا تھا. تو لہذا اگر خاوند بھی بچے کے نسب کی نفی کرتا ہے تو اس کے نسب کو کاٹ کر صرف بیوی کے ساتھ اس بچے کو لازم کر دیا جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں لما رویا بوجہ اس حدیث کو جس کو روایت کیا گیا ہے ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام نفع ولد امرأت ہلال ابن امیہ، کہ حضور علیہ السلام نے نفی فرما دی ہلال ابن امیہ کی بیوی کے بچے کی، عن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال سے ان کی بیوی کے بچے کے نسب کی نفی فرما دی. وہ الحقہ بہا، اور اس بچے کو صرف اسی عورت کے ساتھ ہی ملا دیا. ولئن المقصود من هذا اللعان نفی الولد، اب یہ عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولئن المقصود من هذا اللعان نفی الولد، اور نیز اس لیے کیونکہ اس لعان کے ذریعے مقصود جو ہے ولد کی نفی ہے. یہ جو خاوند ولد کی نفی کی وجہ سے لعان کر رہا ہے تو مقصود ہی کیا ہے، وہ اپنے سے بچے کے نسب کی نفی کرنا چاہتا ہے. فیوفر علیہ مقصودہ، وفر یوفر کا معنی ہے پورا ادا کرنا، کہتے ہیں فیوفر علیہ مقصودہ، تو خاوند کو اس کا مقصود پورا دیا جائے گا، یعنی نصب کی اسے نفی کر دی جائے گی. فَيَتَزَمَّنُهُ الْقَضَاءُ بِالتَّفْرِيقِ, لہذا یہ نفی کو متضمن ہوگی قضاء بالتفریق. قاضی جب جدائی کا فیصلہ کرے گا تو اس جدائی کے ضمن میں ہی نصب کی بھی نفی ہو جائے گی, قاضی کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. قاضی کو نصب کی الگ نفی کرنے کی ضرورت نہیں, قاضی صرف جدائی کا فیصلہ کرے گا اور خاوند سے خود بخود نصب کی بھی نفی ہو جائے گی. لیکن آپ کو آگے بتلائیں گے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, قاضی باقاعدہ نصب کی بھی نفی کو ذکر کرے گا, قاضی باقاعدہ نصب کی نفی کو ذکر کرے گا, اور اسی کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے. بھائی تو کہتے ہیں فَيَتَزَمَّنُهُ الْقَضَاءُ بِالتَّفْرِيقِ, تو یہ نصب کی جو نفی ہے اس کو متضمن ہوگا جدائی کا فیصلہ, یعنی جدائی کے فیصلے کے ضمن میں ہی نصب کی نفی بھی آ جائے گی. وعن ابی یوسف رحم اللہ, اور امام یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ ان القاضی یفرقو, کہ قاضی جدائی کروائے گا. وَيَقُولُ, اور یوں کہے گا, قد الزمتہ امہ, کہ اس بچے کو میں نے اس کی ماں کے ساتھ لازم کر دیا. واخرجتہ من نسب الابی, اور اس کو میں نے باپ کے نسب سے نکال دیا. یہ قاضی کہے گا, ساتھ فیصلے میں لکھے گا, لانہ ینفق عنہ, اس لیے کیونکہ نفی نسب جدا ہو جاتی ہے تفریق سے. بھائی انہوں نے تو بتایا کہ قاضی جدائی کروائے گا, جدائی کے ضمن میں ہی بچے کے نسب کی نفی بھی آ جائے گی, چاہے قاضی اس کو ذکر کرے چاہے ذکر نہ کرے. لیکن کہتے ہیں نہیں, تفریق کے ساتھ نسب کی نفی ضروری نہیں. کس طرح؟ مثلا قاضی نے ابھی تفریق نہیں کروائی تھی کہ بچے کا انتقال ہو گیا, اب صرف قاضی تفریق کروائے گا, بچہ تو مر چکا ہے, نسب کی نفی کی کوئی ضرورت نہیں. معلوم ہوا تفریق نسب کے بغیر ہو سکتی ہے. جب تفریق نسب کے بغیر ہو سکتی ہے تو یہاں تو نسب کی نفی بھی باقاعدہ مقصود تھی, لہذا اس کو الگ قاضی ذکر کرے گا بھائی, کیونکہ وہ خود مقصود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَنْفَقُ عَنْهُ, اس لیے کیونکہ نصب کی نفی جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے اس تفریق سے. فلا بد من ذکرہ, لہذا اس کا ذکر ضروری ہے بھائی. فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ, اور اگر خاوند لوٹا اور اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا, لعان کے بعد یا بچے کی نفی کے بعد وہ شخص پھر اپنے آپ کو جھٹلا دیتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, تو کہتے ہیں فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ, اگر خاوند لوٹا اور اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا یعنی لعان کے بعد, حَدَّهُ الْقَاضِي, تو قاضی اس کو حد لگائے گا, اس پر حد قذف لگائی جائے گی. لاقرار ہی بے وجوب الحد علیہ, اس لیے کیونکہ اس خاوند نے خود اقرار کر لیا ہے اپنے اوپر حد کے واجب ہونے کا. وحل له ان يتزوجها, اور اب اس خاوند کے لیے حلال ہے کہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس نے رجوع کر لیا. جب رجوع کر لیا اب دونوں متلاعنان نہ رہے, جب متلاعنان نہ رہے تو اب یہ نکاح کر سکتے ہیں. کہتے ہیں وَهَذَا عِنْدَهُمَا, اور یہ طرفین کے نزدیک ہے. لِأَنَّهُ لَمَّا حُدَّ, اس لیے کیونکہ خاوند پر جب حد جاری کر دی گئی, لم يبقى اہل اللعانی, تو وہ اہل لعان میں سے نہ رہا, وہ اہل لعان میں سے نہ رہا. توجہ سے سنو بھائی, خاوند پر حد قذف لگ گئی, اب وہ اہل شہادت میں سے نہ رہا. اور اہل لعان تو کون ہوتے ہیں؟ اہل شہادت ہوتے ہیں. تو جب یہ اہل شہادت نہ رہا تو اب یہ اہل لعان بھی نہ رہا, لہذا اب یہ اب متلاعنان نہیں ہیں, اب یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں لأنه لما حد, اس لیے کیونکہ جب خاوند پر حد قذف لگا دی گئی, لم يبقى اہل اللعان, تو یہ اہل لعان ہو کر باقی نہ رہا. فرتفع حکمه المنوط به, تو اٹھ جائے گا وہ حکم بھی, المنوط به, جو اس لعان کے ساتھ متعلق تھا. اس لعان کی وجہ سے دونوں میں تحریم تھی, میاں بیوی ایک دوسرے سے نکاح اب نہیں کر سکتے تھے, لیکن جب لعان اٹھ گیا تو لعان کا حکم جو تحریم ہے وہ بھی اٹھ گیا, اب یہ نکاح کر سکتے ہیں. کہتے ہیں فرتفع حکمہ المنوط بھی, تو اٹھ گیا وہ حکم, المنوط بھی, منوط بھائی طوا کے ساتھ, یہ اس کا معنی ہوتا ہے متعلق بھائی. فرتفع حکمہ المنوط بھی, تو لعان کا جو وہ حکم جو اس کے ساتھ متعلق تھا وہ بھی اٹھ گیا. وہ تحریم, اور وہ تحریم تھی کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام تھے. وَكَذَلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا, ادھر دیکھیے, خاوند اور بیوی جب تک متلاعنین ہیں ان کا نکاح جائز نہیں. متلاعنین نہ رہیں گے تو پھر نکاح جائز ہو جائے گا. اور متلاعنین کب نہ رہیں گے؟ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دیتا ہے, یہ دوسرے کی کیا کر دیتا ہے, تصدیق کر دیتا ہے, تو پھر ان میں نکاح جائز ہو جائے گا کیونکہ اب یہ متلاعنان نہ رہے بھائی. मुतलाइना तो एक दूसरे को झुटलाते हैं भाई। और नीस इसी तरह मियां बीबी ने लियान कर लिया, तवज्जो है, जुदाई आ गई, बाद में खावंद ने किसी और औरत पर जिना का इल्जाम लगाया और वहां गवाह पेश ना कर सका तो खावंद पर हद कजफ जारी हो गई। जब खावंद पर हद कजफ जारी हो गई, अब यह अहले शहादत में से न रहा, यह अहले लियान में से न रहा। जब यह अहले लियान में से न रहा, जब लियान खत्म, तो बीवी के साथ वो तहरीम वाला हुक्म भी खत्म, अब यह अपनी बीवी से निकाह कर सकता है। तोहमत किसी और औरत पर लगाई, लेकिन खावंद पर क्या जारी हो गई, हद कजफ, तो लियान खत्म, लियान खत्म तो उसका हुक्म तहरीम भी खत्म। या खावंद और बीवी ने लियान कर लिया, दोनों में जुदाई आ गई, उसके बाद इस औरत ने जिना किया किसी के साथ, जिना किया, और जब जिना किया तो औरत पर हद जारी की गई, हद जिना भाई, क्या जारी की गई, हद जिना। जब औरत पर हद जिना जारी हो गई तो वह अहले लियान ही ना रही, अहले लियान ही न रही, क्योंकि अहले लियान में क्या जरूरी था कि वो औरत मोहसना हो, पाक दामन हो, उसने जिना ना किया हो, तो इसने तो जिना कर लिया, साबित हो गया, लिहाजा ये अहले लियान न रही। जब ये औरत अहले लियान न रही तो लियान खत्म, जब लियान खत्म तो तहरीम खत्म, तहरीम खत्म तो वो उस खावन से निकाह कर सकती है। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं वकदालिका, और इसी तरह है, यानी निकाह जायज है, इन कजाफा गई रहा, अगर लियान के बाद खावन ने किसी दूसरी औरत पर तोहमत लगा दी, फहुद दबी ही, फिर खावन पर इसकी वजह से हद जारी की गई, हद अजनबी औरत ने जारी करवाई है और हलाल अपनी बीवी हो गई इसके लिए, तो कहते हैं ये उसके लिए हलाल हो जाएगी, लिमा बैन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि जब ये अहले लियान ना रहे तो लियान का हुक्म भी खत्म हो जाएगा। वकदा इजा जनत फहुद्दत, और इसी तरह है जब वो औरत जिसने लियान किया था उसने जिना कर लिया और उस पर हद आ गई, जब हद लग गई तो वो पाकदामन न रही, जब पाकदामन न रही तो वह अहले लियान न रही, जब अहले लियान न रही, लियान खत्म, तो लियान का हुक्म तहरीम भी खत्म, लिहाजा वो अपने खावन से निकाह कर सकती है भाई। तो कहते हैं वकदा इजा जनत फहुद्दत, और इसी तरह है जब उस औरत ने जिसने लियान किया था उसने जिना कर लिया, फहुद्दत, फिर उस पर हद जारी की गई, लिंतफा अहलियत लियान मिन जानिबिहा, इसलिए क्योंकि उस औरत की जानिब से लियान की अहलियत मुंतफी हो गई, उसमें लियान की अहलियत ही न रही, तो अब निकाह जायज हो जाएगा। सूरत समझ में आ गई। चलिए बस, बिहादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।